گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ
وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ
اللَّهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ
اللَّهِ
وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ حابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, آپ مدنی چینل پر ایک سلسلہ پچھلے دنوں میں دیکھتے آ رہے ہیں جس کا نام تھا نوجوانوں کے مسائل. ہمارا نوجوان بھی طرح طرح کی مسائل سے دو چار ہے, ایشوز ہیں ان کے ساتھ بہت سارے. کچھ ان کے پرسنل مسائل ہیں, کچھ ان کے معاشرتی یعنی سوشل میٹرز ہیں, ایشوز ہیں, کچھ ان کے گھریلو مسائل ہیں, کہ ان کے فیملی میٹرز ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری کو سنتا یا ہماری کو مانتا یا ہمارے جذبات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. اور اس موضوع پر آپ نے پچھلے سلسلے بھی دیکھے ہوں گے, آئیے پچھلے سلسلوں کی کچھ آپ کو جھلکیاں دکھا دیں.
فیشن کے حوالے سے, کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں نا.
کنفیشن پیج پہ ہم اپنی دل کی وہ بات کہہ سکتے جو ہم دنیا کے سامنے نہیں کہہ سکتے.
اس کام کے سائڈ افیکٹ نفرت, لڑائی, بے حیائی.
ہمیں لڑکی بھی امپریس ہوتی ہے اس سے, پوری دنیا کے سامنے مجھے آئی لو یو گائز.
فلم کا دیا ہوا تصور تو ہوگا لیکن اسلام کا تو تصور یہ نہیں ہے.
ہمارا دوست ایک بہت اچھی ڈریسنگ کر کے آتا ہے, ہمارا بھی دل ہوتا ہے یار ہم اس کو فالو کریں.
میں نہیں, میں جیسا لگوں, کوئی میرے جیسا کیوں نہ لگے.
یہ بھی جب فلموں کا کلچر ہو, کسی کا بھی
آپس میں گیدرنگ ہونی چاہیے, میوزک ہونا چاہیے, پارٹی ہونی چاہیے. ہم نے اسی میں ہوش سنبھالا مگر زندگی یہ نہیں.
پڑھائی نہیں کرے گا تو آگے جا کے تو اس کو لڑکی نہیں ملے گی. پھر
میرے جواب سن کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو نا تو وہ بھی بالکل آپ کو چھوٹ ہے. آپ بلا جھجک سوال کیجیے گا.
کیا لکھ سکتے ہیں یہ سواد سلم؟
ناجائز ہے.
پہلی بار اگر صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھ دیا اور پھر نیچے جتنے بھی آئے ان کو اگر چھوڑ دیا.
شیطان اپنا کام دکھاتا ہے کہ یہ وہ نفع میں نقصان لے کر آتا ہے.
تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء سے مانگتے ہو,
یہ علم کی کمی ہے. لوگ ڈاکٹر سے مانگتے ہیں, پولیس سے مانگتے ہیں, سب سے مددیں مانگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا لیکن ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا ہے.
آپ نے ان کے آگے خاتون جنت لگایا.
جنت کی عورتوں کی سردار ہے.
صحبت کیسی ہونی چاہیے؟
آج کل جو گیدرنگ ہے نا اس میں فلم چڑھتی ہے. بےچارے کا بٹوا چھپا لیں گے تو کس کا کیا چھپا لیں گے. اندھے چشمہ ڈھونڈ کے بتا, اس کی تو موج لگی ہوئی ہے. اس کی موج نہیں لگی ہوئی, موج اس کی لگی ہوئی ہے بیٹا جو مسجد میں جا رہا ہے.
اے اللہ کے ولی, تو میری بات سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایسا کہنا کیسا, مطلب ایک عام آدمی کو اللہ کا ولی کہنا.
آپ کو بولے یار اللہ کے ولی, آج آپ نے زہر کی نماز قضا کر دی, تو اب آپ کیا بولو گے؟
سننا تو ادا کرنی ہے نا. میں ہلکی ہلکی جس کو خط آج کل کے دور میں بولتے ہیں تو میں وہ بھی رکھ لوں, تو اس میں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے میرے خیال میں.
آگے جا کر اگر اللہ نہ کرے ایسا آئے کہ لوگ پورے کپڑے ہی پسند نہیں کرتے, تھوڑے آدھے کپڑے پسند کرتے, اپنے آدھے کپڑے پہن کر آئیں گے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے. کبھی جوتے کا اسٹائل تبدیل ہوتا ہے تو کبھی موزے کا اسٹائل تبدیل ہوتا ہے. بالکل ساٹھی سا بالکل تنکا سا بنا ہوا ہوتا ہے اور اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے, پھو کرو تو مطلب مسئلہ ہو جائے. نہیں
جی, میت میں جا رہے ہیں تو بھی سفید, شادی میں جا رہے ہیں تو بھی سفید, تو زمانے کے حساب سے تو چلنا پڑے گا نا.
میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے؟
مدینہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے, پیارا پیارا ہے.
بدکاری کا جو ریشو بڑھ رہا ہے اس کی ایک وجہ وقت پر شادی نہ ہونا ہے.
ڈسکس نہیں کر پاتے آپس میں نا,
شادی ابھی بھی آپ ہچکچا رہے ہیں.
اپنا ایک لائف سٹائل چاہیے, ایک سٹینڈرڈ چاہیے.
ماں بھوکی ہوگی تو گھر بھاگ کر نہیں آئے گا کہ یار ماں کے ساتھ کھانا کو. ماں بھوکی ہوگی, بیوی بھوکی ہوگی تو فوراً آ جائے گا.
ماں جھگڑا نہیں کرتی نا.
آپ لوگ کچھ کرو نا معاشرے میں, کوئی سی تبدیلی لے کر.
ایک بات ہے, ہم معاشرے کو بھول جائیں تو پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جائے.
دوست یار رشتے دار کے تانے کون سنے گا کہ یار تم نے ولی میں بھی دال چاول کھلا دیا. مجھے بول دیتا دو دے کے میں کر دیتا.
ہم نے چشمہ بھی خریدنے جانا ہے نا, پہن کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, میرے کو لوگ کیا کہیں گے.
ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بغیر شادی کے ہی اس دنیا سے نکل جائیں گے.
کم از کم بھی سیلری آپ کی 30+ ہونی چاہیے.
آج کل لڑکیوں کے بھی نخرے بڑھ گئے, چھوٹی عمروں میں یہ نارملوں میں شادیاں بھی نہیں کرتی.
اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا تو آپ بیان کریں گے نا.
اب اس طرح کے بہت سارے میٹر نوجوانوں کے ساتھ متعلق رہتے ہیں, اور ویسے بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی بات کو اگر آپ عام کرنا چاہتے ہیں, مشہور کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو بہت زیادہ مطلب کہ نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچوں اور نوجوانوں میں لے کر آئیے. جب وہ ایک چیز کو آن کر لیں گے, ایک چیز کو لے لیں گے, تو پھر وہ اپنے طور پر چلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے آج کل ہمارے دور میں تہوار ہیں, عادات ہیں, ایام ہیں, ڈیز منائے جاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جس میں ہمارے نوجوان کو اس میں ایکٹیو ہونا بہت پسند ہے. اب یہ کون سے ذرا ہیں, کون سے کیا ہیں, اسی کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے. لیکن غور یہ کیا گیا ہے کہ بہت ساری چیزوں نے ہمارے نوجوانوں سے سنجیدگی کو ختم کیا ہے. یہاں میری مراد سنجیدگی سے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں. یہاں پر اپنی صحت کے معاملے میں سنجیدگی, اپنی تعلیم کے معاملے میں سنجیدگی, اچھا اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدگی, اس طرح بہت سارے ٹاپک میں آپ کو ایسا لگے گا شاید نوجوان ہمارا ایک تعداد ہے جو اتنی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے, سیریس نہیں ہے, اس کو سیریس نہیں لیتی. جیسے اگر ہم ماضی کی بات کریں تو بہت سارے میٹر ایسے تھے, معاملات ایسے تھے جسے ہمارے بڑوں نے ایک باقاعدہ اپنی زندگی کو سیریس لیا, ایک سنجیدگی کے ساتھ لیا, اور انہوں نے ایک اچھی فیملی اور ایک اچھا گھر اور ایک اچھا معاشرہ اسٹیبلش کیا. میں اس پہ زیادہ دور نہیں جاتا, کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن ہے, یعنی کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں. آپ دیکھیے کہ جتنے طلاق کے ریشو آج ہیں اتنی کل نہیں تھے, یعنی یہ دونوں اپنے گھر کو چلانے میں صحیح معنوں میں سنجیدہ نہیں ہو پا رہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے گھر ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہیں. اسی طرح تعلیمی معاملے میں لے لیجئے, مذہبی حوالے سے لے لیجئے, بہت سارے اس طرح کے ایشوز پہ لے لیجئے, تو والدین یہ کہتے ہوئے سنائے دیتے ہیں کہ کیا کریں, ہمارے قابو میں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. آج انہیں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلے تو ان سے یہ کہیں گے کہ کیا یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یا معاشرے میں چل رہی ہیں, کیا یہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کہ واقعی سنجیدگی ہے یا نہیں ہے, کیا یہ غلط فہمی ہے یا کیا ہے. تو اب ان کے مائک لگے ہوئے ہیں, اب دیکھیں یہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, یہ کیا کہتے ہیں. میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنیے. میری پیشگی پہلے ان سے کوئی نہ ایسے خاص ملاقات ہے نہ کوئی گفتگو ہے, تو بیٹھ گئے ان کے ساتھ, کوشش کریں گے کہ کسی مسئلے کو اچھے انداز سے حل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون اسٹارٹ لے گا؟
میرا کہنا یہ ہے کہ آج کی نوجوان نہ صرف اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہے, آگے فیوچر میں جا کے بھی ان کے ماں وہ اپنے جیسے ان کے بچے بھی ان سے بدتمیزی کریں گے.
کہتے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر والدین کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں گے تو پاسبلٹی ہے کہ کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی غلط رویہ اختیار کرے گی, کیونکہ آپ کی اولاد بنیادی طور پر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے چل رہے ہوتے ہیں نا. ایک اسٹیج آتا ہے نا جب شادی ہو جاتی ہے, تب اس کے بھی بچے ہو گئے. جیسے میرے بچے دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہوں, ہے نا. تو اب میرے بچوں کے جو بچے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے بچے میرے ساتھ کیسے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں. تو وہ ان چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں, اخذ کرتے ہیں, ان کو لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ان کے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں. اگر کوئی اچھی صحبت مل جائے, کوئی پازیٹیو مینٹیلیٹی مل جائے, تو وہ اس بات کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہمارے والدین نے اپنے والدین کے ساتھ غلط کیا لیکن ہم غلط نہیں کریں گے. مگر اس ایگزامپل آپ کو کم ملیں گی, تو یہ اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی غلط سلوک کر بیٹھے.
کو نہیں لگتا کہ والدین بھی مطلب ان کے اوپر زیادہ سختی کرتے ہیں تو اسی کی بنا پر وہ زیادہ ہی.
ابھی والدین کا تو شمار ہی نہیں ہے, پہلے تو آپ اپنے ہی بارے میں بات کریں, یہاں تو ماں باپ کی بات ہی نہیں.
سنجیدگی ہونے کی وجہ تو وہی ہوتی ہے نا کہ اگر ان کی سختی دیکھی جائے اور اس طرح کے حوالے سے.
ماں باپ کی سختی سے بیٹا آپ کی غیر سنجیدگی کا کیا تعلق ہے؟
وہ مطلب ان کا پابندی لگانا کہ پورا پورا دن پڑھو اور اس طرح سے رہو, یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے بندہ پڑھ پڑھ کر بھی تنگ آ جاتا ہے, تو پھر
کیا کرے,
تو پھر وہ کیا کرے گا, پھر وہ
یہی تو میں عرض کرنا بیٹا کہ دیکھیں والدین کی اگر اس وقت والدین کے ٹریٹمنٹ پر یا والدین کے اس پر گفتگو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی سرا نہیں ہے. لیکن اس وقت میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم صحیح کر لیں, اور اگر واقعی صحیح کر رہے ہیں تو اس کو اور صحیح کریں. اس وقت والدین کو یا ٹیچر کو کسی کو بھی ایشو بنا کر ہم اپنے فیوچر سے کیوں کھیلیں. اس وقت تو میری بات ڈائریکٹ میرے ینگسٹر اور نوجوانوں سے ہے نا, چلو کسی کا بھی قصور ہے واٹ ایور, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی جو غیر سنجیدگی ہے, یعنی آپ کے اٹھنے میں غیر سنجیدگی, آپ کے روزگار کے کمانے میں غیر سنجیدگی, آپ کے تعلیم کے معاملے میں غیر سنجیدگی, آپ کھاتے پیتے ہیں وہ کہا گیا بھائی اس سے آپ کی صحت کو نقصان ہوگا ہے, لیکن یہاں بھی آپ کی غیر سنجیدگی.
بندہ کیا کرے, باہر کے کھانے کھانے کا شوق بھی ہے بندے کو,
تو ڈاکٹر بھی باہر ہی ہوتا ہے, گھر میں کہاں ہوتا ہے,
گھر میں وہ کھانے نہیں ملتے جو باہر ملتے ہیں.
غیر سنجیدگی سے کیا مراد, مثال کے طور پر پیرنٹس کی جو تھاٹس ہے نا سیم ٹو سیم وہی تھاٹس آپ کی ہے نا, اب اسی تھاٹس کو ہمارے ذہن میں کس طرح آئیں گی کہ مثال کے طور پر اگر ہم پیرنٹس کو کہتے بھی نا کہ فی الحال ابھی فیس بک یوز کریں یا موبائل یوز کریں, تو بس ان کو تو ہر وقت یہی لگتا ہے کہ بھائی ان کا یوز زیادہ ہے. اب گھر پہ بندہ دو گھنٹہ یا تین گھنٹہ ہوگا, پورا دن کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم بزی رہتے ہیں, پڑھائی میں بزی رہتے ہیں, اب دو گھنٹہ جب گھر پہ آئیں گے تب بھی یوز کریں گے نا, اب ان میں بھی ان کو یہ لگتا ہے سارا دن اب یہ موبائل میں ہوتا ہے, سارا دن
دوستوں میں چلے جاؤ
تو بھی جلدی آ جاؤ گھر پہ.
آپ
تو کریں گے,
میں عرض کرتا ہوں اس کے اگینسٹ, اگر آپ والد صاحب سے اگر یہ سوال کہہ رہے کہ ابو جب آپ باہر رہتے تھے تو اس وقت تو سوشل میڈیا تو نہیں تھا, اس وقت ابو آپ کیا کرتے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ والد صاحب آپ کو کچھ اپنے لائف ایکسپیرینس کی کوئی ایسی بات بتا دے جو آپ کو فائدے مند ہو. کبھی پوچھا آپ نے, جو ڈبل 12 گھنٹے 24 آورز آپ گزار رہے ہیں اور جس تعلیمی زندگی کے ساتھ آپ گزار رہے ہیں, بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہی تعلیمی زندگی کے ساتھ آپ کے والد صاحب نے بھی اپنا ٹائم گزارا ہوگا. دیکھیں کوئی بھی باپ جو ہے نا وہ مطلب پیدائشی باپ نہیں ہے, اس نے بھی آپ کی طرح ایک اپنی عمر کا حصہ گزارا ہے نا, انہوں نے بھی اپنے والدین کی صحبت میں
نہیں بولتے پہلے حالات ایسے نہیں تھے, اب حالات خراب ہو گئے, آپ لوگ اس سے بگڑ جاؤ گے, نیچے جاؤ گے, زیادہ دیر بیٹھو گے تو وہ ہو جائے گی.
اچھا یہ جو بات والدین کہہ رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے,
تو کیا اس کا سولوشن کیا؟
نہیں میں پہلے ون بائی ون چلیں گے, یہ درست ہے یا غلط ہے, ہم ون بائی ون چلتے ہیں,
ہم غلط ہیں کہ درست ہیں؟
نہیں میں آپ سے والدین کہتے کہ دیکھو بیٹا پہلے زور ایسا نہیں تھا, پہلے بگڑنے کے حالات اور بگڑنے کے معاملات اور اخلاقیات کے تباہ ہونے کے جو ذرائع تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے, اب بیٹا زیادہ ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر حالات خراب ہوں تو ویسے آدمی احتیاط بڑھا دیتا ہے نا,
سارا دن مطلب پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے رہے سے.
نہیں اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ سارا دن ماں باپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے والے ہم بن جائیں, فی الحال تو ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن چونکہ آپ کی گفتگو کو ہم نے ہلکی طرف لانا نا, کہ جو ماں باپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو جائے آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو جائے. دیکھیں والدین کو بیٹا آپ لوگوں سے جو پرابلم ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے نہیں چل رہے ہوتے ہو, والدین کو پرابلم یہ ہے کہ جو باتیں یہ بھی اپنی اس نوجوانی کی عمر میں کرنے کا ذہن رکھتے تھے نا, وہی بات آج ان کی اولاد ان کے سامنے بھی رکھ رہی ہے. جس طرح ان کے ماں باپ نے انہیں روک کر ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی طرف ڈالنے کی کوشش کی, اس وقت یہ بھی ہو سکتا تھا اپنے والدین کے آگے ریزسٹ کرتے ہوں, وہ بھی یہ کہتا کہ ہم دن رات یہ کام کرتے رہیں, تو آپ کے والدین بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بیسیکلی ماں باپ کو اپنی اولاد کا بہتر فیوچر جو ہے نا وہ پسند ہے, ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا فیوچر بہتر ہو. ایک عالم ہوگا مذہبی ذہن ہوگا وہ بھی چاہے گا کہ میری اولاد کا فیوچر بہتر ہو کہ ایک اچھا عالم بن جائے, ایک حافظ سمجھے گا کہ میری اولاد کا فیوچر بہتر ہو کہ اچھا حافظ بن جائے, ایک مفتی کا ذہن ہوگی کہ میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو کہ اچھا مفتی بن جائے, ڈاکٹر چاہے گا کہ میرا بیٹا اچھا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر چاہے گا میرا بیٹا اچھا انجینئر بن جائے. بس ان کو لگتا ایسا ہے کہ یہ کر نہیں رہے ہوتے. اب بھلے آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ پورا دن موبائل فون پر بزی رہتا ہے اور ہم تو یہ دو تین گھنٹے لے کر بیٹھے ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ موبائل فون گھر میں رکھ کر باہر جاتے ہیں, موبائل فون بھی گھر کے باہر
تب بھی اسمارٹ فون بھی ہوتا ہے, چھوٹا یوز والا ہوتا ہے,
آپ
کی بات کہنے کو بالکل اچھی لگ رہی ہے, پریکٹیکل نہیں ہے آپ کی بات.
اگر بات اچھی ہے, اگر بات اچھی ہے ठीक, अगर बात अच्छी है, जबकि आप कह रहे हैं कि आपकी बात अच्छी लग रही है, तो अक्ल क्या कहती है कि अच्छी बात को प्रैक्टिकल कराने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर अच्छी है तो ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पा रही, हम इस पर गौर करें। हाँ, बात ही अगर अच्छी ना हो और आपको लगे कि नहीं बात ही एक्सेप्टेबल नहीं है और आप बात को डिनाई कर रहे हो, इसको बिल्कुल मनाई कर रहे हो कि नहीं यार ये कोई अकल में आने वाली बात ही नहीं है, तो फिर हमको नहीं नया मौजू ले लेते हैं। ये बताइए कि क्या जितने भी आपकी उम्र के नौजवान हैं सारे के सारे इसी तरह की रूटीन पर हैं?
नहीं होंगी जिससे वो इस रूटीन पर नहीं आ रहे।
तो आज क्या आज हमारी एज ऐसी है कि हम आसाइशों में गुम होकर अपने फ्यूचर को तकलीफ में डाल दें? यानी ये बात समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप फ्यूचर की आसाइश चाहते हैं, फ्यूचर की आपको एक सहूलत चाहते हैं, तो फ्यूचर की सहूलत के लिए, मुस्तकबिल की सहूलत के लिए हमें अपना हाल जो है ना, ये बाज औकात टफ गुजारना पड़ता है। देखिए तालीम है ना, पढ़ाई, पढ़ाई खुद एक टफ शेड्यूल है। पढ़ो, इम्तिहान दो, स्कूल जाओ, उठो, यूनिफॉर्म करो, और थके आ रहे इतना बड़ा बैग उठाओ तो क्या जरूरत है सब कुछ करने की? ना पढ़े, ना स्कूल जाएं, ना बैग उठाएं। अब ये मेरा ख्याल है कुछ मतलब पांच सात किलो का तो बैग होता होगा, एक इतना भारी बैग उठाकर जाना, वैगनों के, बसों के और गाड़ियों के धक्के खाना, और स्कूल में बैठ कर इतनी टीचर की मारपीट वाले मसाइल से गुजरना, जो भी है, तो बेटा ये मुशक्कत उठाने की क्या जरूरत है? ये टाइम जो स्कूल या किसी और तालीम के नाम पर जो आप 8-10 घंटे गुजार रहे हो, इसको खत्म करें और इसको भी अपनी आसाइश में गुजारें। ना जाएं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी आप जाते हैं आसाइश के नाम पर, उसको भी गुजारें। ये भी वक्त घूमने फिरने में, मौज मस्ती में गुजारें, तो खाली आसाइश वहां क्यों नहीं है?
इसका गलत इस्तेमाल ही कर रहे हो तो हम इस तरह बोलें कि भाई आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इस वजह से ना आप ये यूज नहीं करो। अब आसाइश है, खुदा ने दिए तो क्यों इस्तेमाल नहीं करें?
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस तरह चीजों के इस्तेमाल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, क्या हम उस तरह अपनी चीजों को और अपने मुझको रूटीन को इस्तेमाल कर पा रहे या नहीं कर पा रहे? डेफिनेटली ये एक सवाल तो रहेगा ना। ये आखिरत की तैयारी में तो रुकावट बनी बनी, इतना टाइम अगर बंदा कुरान पाक पढ़ने में, तिलावत करने में या और नेक काम करने में, चलो आप बोलो यार इसके अलावा भी तो कोई जिंदगी है, तो चलो वालिदैन की खिदमत करने में, वालिदैन का दिल खुश करने में ही ये वक्त गुजार लेता तो हो सकता था कि इसके लिए आगे सवाब का जरिया बन जाए और कोई अच्छे और नेक काम का जरिया बन जाए।
तो फिर माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करें?
माइंड फ्रेश करने के लिए जो आपके वालिद साहब को है कि घर आते हैं तो बेटे का मसला, घर आते हैं तो आपकी अम्मी का मसला, दफ्तर पे जाते हैं तो ऑफिस का मसला, तो रोजगार का मसला, आपका महीना पूरा हो रहा है तो आपको पॉकेट मनी देनी है, तो बिल आ गया तो यूटिलिटीज बिल पेमेंट करनी है, तो घर का राशन डलवाना है, तो ऑफिस जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, 10 किस्म की, अगर बिजनेसमैन भी हैं तो जनाब सब मुलाजिमैन की सैलरी अरेंज करनी है, पूरा बिजनेस अरेंज करना है, आपकी स्कूल की, आपकी कॉलेज की फीसें देनी है, तो बेटा फ्रेश होने की जरूरत तो वालिद साहब को, आपको फ्रेश होने की जरूरत क्या? आपने कौन सा ऐसा पहाड़ उठा लिया सर के ऊपर कि आज आपको थककर फ्रेश होना है? हाँ, आपकी उम्र के जो लड़के लेबर वर्क करते हैं, ईंटे उठाते हैं बिल्डिंगों में, ये भी ईंटे चढ़ाते हैं, आपकी उम्र के कितने लड़के हैं तो बाकायदा ईंटे चढ़ाते हैं, ईंटे नीचे रखते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, बजरी का काम करते हैं, तो ये भी बोले यार थक गए हमको फ्रेश होने के लिए कोई,
उनको तो थका नहीं, वो तो सो जाएंगे जाके। अब एक बंदा पढ़ रहा है,
आपको थका नहीं है ना,
अब वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब चीजें देख रहा है, डांट भी सुन रहा है, कॉलेज में भी डांट सुन रहा है, आगे पीछे भी, तो वो कहीं ना कहीं तो माइंड फ्रेश करेगा। अब आप बोलते हैं कि वो घर पे आए पढ़ लिख के और वो कुरान तक लेके बैठ जाए, ये अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। अब लेकिन वो 2 घंटे बैठ जाए, अगर वो फ्री है तो वो कुरान तक लेके बैठ जाए, वो बाहर भी नहीं जाए,
क्या करे? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबसे वन बाय वन चलते हैं, ठीक है? अब सोचते जाएं क्या करें, ये करें, ये करें, ये करें, हो सकता है कि आपके जहन में, मेरे जहन में 10 चीजें हों, आपके जहन में 50 चीजें हों, तो आप तो भी प्रैक्टिकल है ना, मेरी उम्र निकल गई है, मैं उस तरह आपकी तरफ प्रैक्टिकल आपके एज के मुताबिक नहीं हूं डेफिनेटली, ये तो बात सामने है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब थक गए, अब बोर हो गए हो, खाली पढ़ाई करते रहे, चलो अम्मी ने दूध का बोला दूध भी ले, अम्मी ने काम का बोला काम भी ले, अबू ने भी 2 काम बोले थे वो भी कर दिए, मैं अबू की भी कोई नाफरमानी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको प्लस करता चला जाता हूँ, मैं अबू की भी कोई नाफरमानी नहीं कर रहा हूँ, अम्मी जब बुलाती है मैं भी जी अम्मी कहकर हाजिर हो जाता हूँ, और अब मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, मैं फ्रेश होना, क्यों फ्रेश होना चाहते हो ये एक अलग बात है, ऐसा क्या हो गया कि फ्रेश होना चाहते हो, क्या कहता है कि डिफ्रेश हो गए हो या मतलब कि खराब हो गए हो, क्या वो फ्रेश होने की जरूरत है? लेकिन वो एक आपकी एक इस्तला है, आपकी एक टर्मोलॉजी है, हम क्या करें। अब आपको अगर ये कह दिया जाए ठीक है चलो फ्रेश होना चाहते हैं, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए। देखो ये तो मुसलमान का काम है कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। अब आप मुझे बताएगा ऐसा काम बताइए आपको आपके कॉल के मुताबिक आपको फ्रेश भी कर दे, आपको मुतमिन भी कर दे, आपको तसल्ली हो जाएगा यार मैंने कुछ किया फारिग होने के बाद मैंने कुछ किया, और इससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब ना हो। ये तो है ना, तो दुनिया आखिरत भी ना दुनिया खराब हो ना आखिरत खराब हो, और मैं ये कर भी लूं, तो ऐसे कौन कौन से काम है आपने फिर वन बाय वन करके लिस्ट, इसके मतलब लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बना के मदनी चैनल पर दे देंगे, और मदनी चैनल पर ये होगा कि लाखों लोगों के लिए गाइडलाइन हो जाएगी आप लोगों के जरिए। चले स्टार्ट।
जो भी काम बोलेंगे फेसबुक यूज करते हैं तो आप बोलेंगे उसमें गुनाह
का, मसाइल की वजह ये सोशल मीडिया हो सकती है, क्योंकि उस दौर की तो बात है कि उस दौर में ये सोशल मीडिया में इतना वो नहीं था, ये इस दौर में है। अगर इस दौर में अगर सोशल मीडिया है तो शायद इसी वजह से हम टाइम दे नहीं पाए।
नहीं आप पहले तो ये करें कि ये क्या करना है आपको, पहले ये बताओ वन बाय वन चलते
हैं। सोशल मीडिया में मतलब बहुत सारी
सोशल मीडिया में आप टाइम निकालना चाहते हैं,
मतलब इसमें सारा टाइम निकल जाए
मसलन कैसे टाइम सोशल मीडिया में टाइम गुजारने का मतलब बहुत सारे जरिए ठीक है ना,
फेसबुक है उस पर पूरी
क्या करना चाहते
हैं फ्रेंड्स के साथ चैटिंग वगैरह कर लिया
या अगर चैटिंग भी ना हो तो पूरी दुनिया मतलब उस पर हर चीज उसी वक्त अपडेट हो रही है।
क्या करना चाह रहे हैं मतलब क्या अपडेट लेना चाह रहे हैं प्लीज मेरे साथ
थोड़ा खुले इन्वेंशंस आ रही है उनके बारे में देखना या कोई फनी क्लिप्स वगैरह देख ली।
अब देखिए कितने फनी क्लिप्स ऐसे हैं वन बाय वन चलते ना फनी क्लिप्स आ गए ठीक है, जैसे मुजाहिया चुटकुले जिसको हम कहते हैं जॉक्स आ गए आपके। अब इसमें मोस्टली झूठ पर मबनी होते हैं मोस्टली, और इससे बाद औकात कुफर पर मबनी होते हैं, अल्लाह उसके रसूल फरिश्ते जन्नत जहन्नम के हवाले से भी बहुत सारी इसमें गलत चीजें होती हैं। इसमें मोस्टली ये भी होता है वीडियोस जो क्लिप्स आएंगे जितने भी वीडियोस क्लिप आएंगे इनमें फिर ये होता है कि बाद वक्त मौसीकी उसमें बिल्कुल आ जाती है तो चलो मौसीकी हराम। अच्छा इसमें अजनबी लड़कियां आ जाती हैं इनको देखने की भी इजाजत नहीं है। अच्छा इसमें जो कॉमेडी आएगी तो कॉमेडी में भी झूठ भी है तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं तो चलो ये भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल झूठ से पाक सच्ची अच्छी एक सेहतमंद अगर कोई छोटी मोटी सी अगर इसमें थोड़ी बहुत सी भी अगर इसमें कोई मुजाहिया किस्म की चीज मिजा आ जाता है तो नो प्रॉब्लम बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है कर सकते हैं, क्योंकि इसको आदत बनाने की शरीयत ने हमें इजाजत नहीं दी है कि इससे संजीति खत्म होकर इंसान अपने मकसद से हट जाता है। तो अब इसके अलावा आप क्या चाहते हैं?
मूवी
मूवी तो मैंने कहा ना मूवी कौन सी मूवी मूवी तो बोल अभी हम जो बना रहे हैं मूवी बन रही है देखने वाले ये भी मूवी देखेंगे जब देखेंगे तो आप कौन सी वीडियोस की बात कर रहे हैं?
इंग्लिश हो गई इंडियन हो गई टेम्परेरी तो मजा आ रहा होता है
वीडियो से मेरा फिल्में तो फिल्में तो वैसे ना जायज है। मैंने क्या कहा वो हम वो रास्ता ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं कि जिससे हमारी दुनिया और आखिरत जाया ना हो।
फ्रेंड्स
गैदरिंग
आधा डेढ़ घंटा क्या हो जाएगा लेकिन नहीं 15 मिनट के बाद ही कॉल आएगी। रात को क्रिकेट खेलने के लिए नीचे उतर गए तो बोलते नहीं जाओ छुट्टी का दिन हो
खाना कौन से शॉर्ट्स पहन के खेल रहे
पूरे पूरे कपड़े पहने हुए
जी
कौन से शॉर्ट्स पहन के खेल रहे पूरे पूरे कपड़े पहने हुए
पूरे कपड़े पहने हुए
टी शर्ट
है। इस पर भी माँ बाप आपको मना कर रहे हैं कि वो नहीं करो क्यों मना कर रहे
हैं जल्दी ऊपर आ जाओ
बच्चा
दोस्तों की सोहबत
अच्छे दोस्त नहीं थे
अच्छे हमारे जैसे
अच्छे क्या है मैं क्या अच्छाई थी ऐसे पूछ रहा हूँ भाई आप भी तो मैं मुझे तो इससे आप थोड़ा गाइड करो कि आपको कहते मेरा दोस्त अच्छा है तो आपको उसमें क्या क्या अच्छाई नजर आई?
पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ना
पाबंदी नमाज पढ़ता है और
मेरे जैसा ही है बस
आप अच्छे हैं आपके जैसा है आप अच्छे
अच्छा ही लग रहा हूँ ना तब मेरे को नहीं जाने दे रहे
नहीं पेरेंट्स को ऐसी क्या चीज है कि इसको इसके दोस्त
वही ना यही तो सवाल है
जी तो हाँ ये प्रॉब्लम है
अच्छा, फ्रेंड्स के साथ बैठने में पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। अच्छा जैसे कभी फ्रेंड्स में अगर बैठना उठना भी रहा है जैसे कभी बातचीत चल रही होती है तो वो बोलता है यार अब्बू ने मना कर दिया कि आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा वो दूसरा बोलता है अपने अब्बू को पता मुझसे ज्यादा तो इन कामों में तू है मतलब गलत कामों में तू है अपने बेटे को ज्यादा अच्छा समझ रहा है, गलत समझ रहा, तो उसके साथ बेटे का बिगड़ना चाहे तो बंदा करे तो करेगा। यहाँ से तो हर जगह से आगे अब यही हो रहा है कि बस बंदा बस नमाज
रात को लेट नाइट बाहर रहना
तो वक्त ही नहीं है ना फिर।
नहीं, रात को लेट नाइट बाहर रहना ये तो वैसे दुरुस्त नहीं है, ठीक है, कि रात तो सोने के लिए, क्योंकि सुबह आपको डेफिनेटली अपने दीगर जो मसरूफियात हैं उसमें रहना है। तो कोई भी वालिदैन दुनिया भर में, बल्कि वालिदैन की क्या बात है, यानी कि कहते हैं ना बिला इजाजत शरई, तो रात देर तक ये सारी चीजें करना या रात ईशा के बाद की बहुत सारी एक्टिविटीज के मामले में, तो शरीयत भी इस मामले में बड़ी रहनुमाई करती है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। रात तो सोने के लिए ना। अच्छा, हम गली में अगर क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली शोर उठेगा, तो शोर उठेगा धोखों के इबादत तलफ होंगे, लोगों को तकलीफ होगी, जो सोना चाहते हैं इन्हें तकलीफ होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसकी इजाजत भी नहीं दी जाएगी कि गलियों में अगर क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली वो शोर उठेगा। अच्छा, फिर क्रिकेट खेलते खेलते या कुछ और स्पोर्ट्स करते करते अगर वो स्पोर्ट्स उस वक्त जो हम कर रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर हम कह भी दें कि भाई इसमें कोई गैर शरी चीज नहीं है, तो फिर इसके आदि हो जाने का अंदेशा रहता है। आदि हो जाने के बाद फिर यह होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाजें भी जाती हैं, गफलत भी बढ़ती है, और फिर बहुत सारी चीजें गुनाहों की तरफ ले जाई जाती है। तो फिर उलमा मना करेंगे कि भाई इससे बच जाओ, ताकि ये तुमको गफलत की तरफ लेके जाएगा। ये भी एक मीटर है।
अगर कोई ऐसी जॉब कर रहा है, ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है कि वो सुबह निकलता है और फिर रात लेट नाइट हो जाती है, और उसके बाद फिर माइंड फ्रेश के लिए अगर वो थोड़ी देर के लिए अगर दोस्तों में बैठता है, या अगर वहां भी नहीं जाता, अगर वहां की इजाजत भी नहीं मिलती, तो घर में बैठे अगर सोशल मीडिया यूज करता है,
अगर देखे दोस्तों में या इस्लामी भाई में, अभी भी अगर तुम दोस्तों वाला वो माहौल नहीं है, लेकिन अभी भी तुम बैठे हुए ना। अच्छा, ये बताए कि आपके वालिदैन को भी पता चल जाए कि आप इस वक्त यहाँ बैठे हुए हो, रिकॉर्डिंग है, या दावत इस्लामी के किसी मुबल्लिग के साथ बैठे हुए हैं, कोई दर्स हो रहा है, कोई नेकी की दावत हो रही है, तो आपको कॉल आएगी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
वो तो भूल के एक मसला क्लियर करने आए
जी,
एक मसला क्लियर करने आए। अभी रमजान आने वाली है ना,
तो नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको मुसलसल पैसा करो कि वालिद साहब को या वालिदा वगैरह को पता चल जाए कि आप यहाँ मतलब इस तरह के एक बैठे हुए हैं, थोड़ी एक नातखानी भी हो रही है, और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, निकी की दावत का सिलसिला है, तो आपको बार बार कॉल आएगी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आपको लगता है?
डेफिनेटली ये नहीं करेंगे।
वजह यानी आपके बाहर रहने से इनको प्रॉब्लम तो है, तो ये प्रॉब्लम अब क्यों नहीं है?
सीधी राह पे अल्लाह,
इनको डर क्या है कि आप बाहर उल्टी राह पर चले जाएंगे? इस तो उल्टी राह पर है या नहीं है ये बहस नहीं है, बहस ये है कि आप उल्टी राह पर जाने की पोजिशन में आ गए हो, कि ये वो वे है जहां से अगर आप मजीद आगे चलेंगे तो डर है कि आप उल्टे रास्ते पर आ जाएंगे। तो आपके वालिदैन को जो आपको घर बुलाने की जो जल्दी है ना, वो जल्दी इसलिए नहीं है कि वो आपके बाहर रहने या ना रहने से कुछ आउट ऑफ नेचर एलर्जी गए, उनको वो प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारा बच्चा हाथ से, देखे ना कोई भी अपने सरमाए की फिक्र करता है ना, इसमें आप माँ बाप को नेगेटिव लेने के बजाय पॉजिटिव के लिए, मेरे बाबा को मेरी कितनी फिक्र है यार, मेरे बाबा को मेरी कितनी फिक्र है, मैं आधा घंटा लेट होता हूँ तो मेरे बाबा को फिक्र होती है, मैं 15 मिनट लेट होता हूँ तो मेरी माँ सोती नहीं है, 15 मिनट के बाद बोलता आ जाऊंगा नहीं आया तो मेरी माँ मुझे फोन करती है, ये चीजें पैन बढ़ाती हैं या माँ बाप की मोहब्बत बढ़ाती है?
अगर बच्चा 1 घंटा बाहर रहेगा तो माँ बाप की 5 से 6 कॉल आ जाएंगी कि जल्दी करा दो, वही बच्चा 4 घंटे मोबाइल लेके बैठा हुआ या कंप्यूटर पे बैठा हुआ है तो माँ बाप को तशवीश नहीं होगी। अब उस पे कंप्यूटर पे जो भी कर रहा है, मूवीज देख रहा है, जो भी एक्सरसाइज जो भी कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, उस पे तशवीश नहीं होगी इनको। बाहर रहेंगे तो तशवीश होगी, क्या पता घर में बैठ के वो 4 घंटे में वो काम कर ले जो 1 घंटे में नहीं करेगा। कंप्यूटर पे पूरी दुनिया मौजूद है, मोबाइल पे पूरी दुनिया मौजूद है, बाहर 1 घंटे के लिए जाएगा तो 5 से 6 दोस्त, सिर्फ 6 दोस्त मौजूद है, बस 6 दोस्त वो तरबियत नहीं करेंगे उसकी, तो 4 घंटे या 3 घंटे बैठ के उस मोबाइल पे वो काम कर लेगा।
आपकी बात दुरुस्त है कि बाहर रहता है ना तो टेंशन बढ़ता है, घर में क्यों नहीं माँ फोन करते या क्यों टेंशन? एक तो एक है माँ बाप के सामने, एक तसल्ली क्या है हमारा, देखो ये जब आप बेटे बड़े हो गए, जब आपके बच्चे होंगे ना, हो सकता है आपके बच्चे किसी मेरे जैसे के साथ बैठे हुए होंगे और शायद यही सवाल कर रहे होंगे, उस वक्त आपके बारे में आपका बच्चा बोला होगा मेरा अबू मुझे बाहर नहीं रहने देते, उस वक्त अगर ये सिलसिला रहा तो ये अकबर भाई ये जरा रखिएगा रिकॉर्ड पर,
इनके वहीं के बच्चों को भी दिखा देंगे कि देखो आप आपके अबू भी जब छोटे थे ना तो आपके अबू भी यही कहते थे। तो एक चेन है। अब मसला ये है कि यहाँ भी माँ बाप की मोहब्बत को गौर करें कि माँ बाप को एक तो ये तसल्ली क्या हो गई है कि ये हमारी आंखों के सामने है, ये तसल्ली हो गई है। बाहर तसल्ली नहीं है, इधर चला गया होगा, क्या कर रहा होगा। अभी आप जो कुछ कर रहे हैं ना, किसी हद तक माँ बाप की आंखों के सामने है। वो कुछ जिसके बारे में ये तस्वीर कर रहे थे माँ बाप कि कहीं ऐसा ऐसा मेरा बेटा ना हो जाए, कम से कम वो चीजें इनकी आंखों के सामने नहीं हो रही, नंबर वन। अब रही बात कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए वो कौन कौन से गलत काम करने में पड़ गए हैं जो बाहर के मुकाबले में घर में ज्यादा इजी है इस डिवाइस के जरिए। यहाँ माँ बाप की गलती हम बताते रहते हैं, यहाँ माँ बाप की एक कोताही है कि माँ बाप ने यूं समझो कि एक चीज दे दी है मगर इसकी तरबियत नहीं की है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना, क्योंकि माँ बाप को भी उमूमन आज के दौर में इतना पता नहीं है कि ये चीजें जो हैं इनके पीछे कौन कौन से बिगड़ने के असबाब हैं। उन्होंने सिर्फ इस चीज को समझ लिया है कि बाहर ही बच्चा बिगड़ता है, घर में पहले नहीं बिगड़े जाते थे ऐसे। लेकिन घर में पहले लोग सो जाते थे यार, अगर माजी में चले जाएंगे ना अपने अबू को पूछेंगे अबू आप कब सोते थे, तो आपको ज्यादातर वही वाले साहब मिलेंगे जो कहेंगे कि बेटा हम 10-11 बजे 9:30-10 बजे सो जाते हैं। अच्छा ये तो जो स्टोरी है ना, ये सब तो हमारे शहर की बात कर रहे हैं ना, आप जैसे करोड़ों नौजवान तो गाँव देहातों में रहते नहीं रहते बेटा। हम खुद हमारे पाकिस्तान की 70% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, ये देहाती है, गांव की है, विलेजेस की है। वहां तो रात को ईशा के बाद तो कोई नौजवान का मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको सुबह 6-7 बजे तो खेतों में जाना है, गांव में जाना है, मार्केटों में जाना है, बाजारों में जाना है ना। बात छोटे शहर भी है जिनमें यही रूटीन है, तो वो लोग बेटा कैसे जीते हैं। वो भी तो थकते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, कारोबार करते हैं, रोजगार करते हैं, या जो भी पढ़ाई वगैरह करते हैं वो भी करते हैं। वहां तो ना नेट है ना केबल, केबल भी नहीं है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं जिनमें केबल नाम की चीज ही नहीं है। तो गांव देहातों में तो ना केबल है, ना नेट है, ना इन्होंने कभी स्मार्टफोन का नाम सुना होगा, एक तादाद होगी, ना एंड्रॉइड का नाम सुना होगा, ना ये किसी के नाम सुने होंगे। लेकिन वो अपनी जिंदगी की रूटीन में मेरे बच्चों, उनको पता है कि इस वक्त हमें सोना है, इस वक्त हमें काम करना है, इस वक्त हमें रोजगार कमाना है। आज आप देखिए कि हमारे अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें ना, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी एक अच्छे एजुकेटेड लोग कहाँ मिल रहे हैं। खुद आप लोग अपनी तालीम का जायजा ले लें, मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो पढ़ने का जो अंदाज है वो कितना नीचे आ गया है, लेसन होमवर्क का जो अंदाज है कितना नीचे आ गया है, जो मेमोरी की जो शार्पनेस पहले थी, याददाश्त, वो कितनी नीचे आ गई है। अच्छा पहले जितना दिल लगता था पढ़ाई के अंदर वो अब नहीं लगता, क्योंकि दिल अब किसी और जगह चला गया है कि जल्दी से फारिग होकर ये काम करें, फारिग हो ये काम करें। ये जो आप जिसको आप एक मसरूफियत कह रहे हैं, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये ऐसी अजीब व गरीब मसरूफियात हैं और ऐसी अजीब व गरीब एक्टिविटीज हैं कि जब इसकी आदत पड़ जाती है ना, तो जिसकी आदत होगी आप उसको पूछिएगा, अगर वो नमाजी भी होगा ना तभी नमाज पढ़ने का दिल नहीं होता होगा। यानी मिसाल के तौर पर वो रख देगा तो यार चलो नमाज जा रही है, अब जल्दी से नमाज पढ़ू, तस्बीह क्या पढ़ी, फातिहा क्या किया, दुआ क्या की, फौरन उठ कर फिर लेकर वो बैठ जाएगा कि यार ये चीज देखनी थी, ये चीज करनी थी। ना उसका मस्जिद में दिल लगेगा, ना उसके इबादत में दिल लगेगा, ना उसे किसी और चीज में दिल लगेगा। यानी वालिदैन जो समझा रहे हैं ना, इनका समझाने का नुक्ता नजर कुछ और है। मैं जो आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ ना मेरे बच्चों, मेरा नुक्ता नजर कुछ और है। मेरा नुक्ता नजर ये है कि हम जो हमारे एक एज ए मुस्लिम जो हमारी जिंदगी का मकसद है ना, हम उसमें बेटा पीछे रह जाएंगे। ना आपके हाथ में तालीम आएगी, ना आपके हाथ में दीनी माहौल आएगा, ना आपके हाथ में आपकी सेहत आएगी, ना आपके हाथ में आपकी सोच आएगी, आपकी आई साइड भी, आपका मेंटली जो IQ है वो कमजोर हो जाएगा, आप फिजिकली कमजोर हो जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो चलो मैं तो मजहबी आदमी, आप किसी अच्छे तजर्बे का डॉक्टर से बात कर लो, डॉक्टर आपको कहेगा कि ये जो 2-3 घंटे जो बैठकर टाइम पास करने कह रहे ना, इन चीजों ने, डिवाइसेस ने आपकी सेहत को, आपकी फिजिकली फिटनेस को और आपकी मेंटेलिटी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। ये अभी आपको अंदाजा नहीं होगा, अभी तो आपका चढ़ता खून है ना, आगे जाकर पता चलेगा कि हमने क्या कर दिया। अगर आप में बड़ा संजीदगी आ जाए, देखो जो माँ बाप ओवर हो जाते हैं कि जितना नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब कि डांट डपट से काम लेते हैं, गुस्से से काम लेते हैं, तो डेफिनेटली कि उनके बच्चों का उनके पास दिल ही नहीं लगेगा। वो भी ये कहेंगे यार माँ बाप के पास बैठेंगे तो बात बात पर वो डांटेंगे, झाड़ेंगे, टोकेंगे, उनका दिल नहीं लगेगा। तो उनको वैसे तो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत नरमी और दोस्ताना माहौल में रहना चाहिए। लेकिन एक बात बेटा याद रखना कि जिस गैर संजीदगी को आज हमारे नौजवानों ने इख्तियार किया हुआ है ना, अब बताइए कि अब जब हम शहर के लड़कों की बात करें तो रात दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बजे तक जागते हैं, क्या ये आदत अच्छी है? क्या ये पहली आदतें थी? जिन चीजों में आप आधा घंटा कहकर इन्वॉल्व हुए थे आज वही चीजें आपके तीन तीन चार चार घंटे ले रही हैं। आप देखते हैं कि आपके अंदर खुद कंट्रोलिंग लेवल है ही नहीं, और यही इस एज का प्रॉब्लम है कि इस एज के अंदर हमारे अंदर अपने अंदर जो काबू करने की सलाहियत होती है ना, कॉन्फिडेंस, वो नहीं पाता आदमी। उसको उसके लिए उसको थोड़ा सा मैच्योर होना जरूरी होता है, इसलिए माँ बाप इतना बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं हम कर लेंगे, नहीं हम कर लेंगे, लेकिन आगे जाकर आके यही नौजवान बेटा भीग जाता है, भटक जाता है, अपनी फ्यूचर को लॉस करता है, अपनी तालीम का नुकसान करता है, अपनी सेहत का नुकसान करता है, क्योंकि उसने उन चीजों को छोड़ दिया जो उसको करनी थी, इसलिए रोकते हैं। तो यहाँ पर संजीदगी बहुत जरूरी है।
आप जो बोल रहे हैं कि पुराने ये जो हमारे गांव देहात के लोग हैं ये रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह खेती बाड़ी करते, तो ये लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं है कि इनको रात को जल्दी सोना है, सुबह उठ के खेती बाड़ी करनी है? हमारे जो शहर है इनमें रात को सोना है, सुबह तालीम हासिल करने जाना है, वहाँ पे पेपर की टेंशन, पेपर क्लियर नहीं हुआ तो पेनल्टी, फिर जॉब पे दूसरे काम पे घर आके, तो माइंड तो फ्रेश करना जरूरी है।
ये इन्हीं में माइंड फ्रेश हो जाएगा जब आप इसी मसूसियत के में जब वुजू करके जोहर पढ़ने जाएंगे ना, और मस्जिद में थोड़ा देर रखेंगे, फिर असर पढ़ने जाएंगे, मस्जिद में थोड़ी देर रुके, फिर मगरिब पढ़ने जाएंगे, थोड़ी देर रुकिए, फिर ईशा पढ़ने जाएंगे, फिर थोड़ा देर स्टे लीजिए, फिर इसमें आप मजहबी माहौल ले लीजिए। देखिए जब आप घंटा डेढ़ घंटा निकालना चाह ही रहे, आपके पास इतना स्पेस है, तो आप अपने आशिकाने रसूल की सोबत ले लीजिए, जिनके साथ बैठेंगे तो कोई दीन की बात होगी, इस्लाम की बात होगी, और अगर कोई मुबा बात भी होगी तो वो काम की बात होगी, आपको माँ बाप की इताअत की बात की जाएगी, जहां पर हमारे नौजवान हीरोइन के मुंशियात के आदि नहीं बनेंगे। ये बताइए बनते हैं? अभी बन रहे हैं, नशे के आदि बन रहे हैं, पहले बनते थे। अब में जो खराबी है उस खराबी के बेटे कोई तो वजूहत तो आप ढूंढेंगे ना।
गाँव में और शहर में ये फर्क है कि गाँव के लोग मोटिवेट किस तरह होंगे? हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, शहर में डिवाइसेस हैं, हर चीज है, तो उसमें हम ये सब चीजें देख के हम ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं। अगर कोई शख्स घूम फिर रहा है, हम देख रहे हैं उसको अगर अपनी स्क्रीन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली नौजवानों में एग्री करने की बात कबूल करती है, आवाम जनरेशन कबूल करती है।
एक बंदा रोजाना दाल चावल ही खा रहा है, जिंगर बर्गर खाएगा तब पता लगेगा उसको मजा
क्या पता लगेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
हम मोटिवेट हो रहे हैं, गांव वाले मोटिवेट नहीं हो रहे, इसलिए वो इस तरह की आदतों में नहीं।
गांव में जब जहां जहां केबल पहुंचा ना, उनकी तबीयत बदल गई,
मोटिवेट हुआ ना वो चीजें देखिए।
वो चीजें जो हमें मुयस्सर आई, जिनको आपने आसाइश का नाम दिया, बट असल में आसाइश ये चीजें नहीं थी, ये तो तफरीहात हैं। आपने आसाइश को तफरीहात को अलग करना पड़ेगा। आसाइश किसी और शे का नाम है, तफरीहात किसी और शे का नाम है। आसाइश में आप तफरी आप आसाइश निकाल रहे हैं। आसाइश एक आरामदेह चीज हो गई ना, सहूलत वाली चीज हो गई। जब ये बिल्कुल लकड़ी की कुर्सी हो, पीछे टेक लगाने के बिना हो, तो यार नरम कुर्सी ले लो, थोड़ा टेक लगा कर बैठो, यार एक ये कुर्सी, ये आसाइशी कुर्सी हो गई, एक आसाइश हो गई। सोने के लिए आपको जगह अच्छी मिल गई। तो जो जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी आसाइशें और सहूलियात चाहिए थी, वो तो आपके माँ बाप ने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप और हम आसाइश के पीछे नहीं है, आप और हम तफरी के पीछे, जिसको आपके आज के दौर में इंटरटेनमेंट कहते हैं, इंटरटेनमेंट के पीछे। जब इंटरटेनमेंट के पीछे, तो इंटरटेनमेंट वो तफरी कि जिसका ताल्लुक शरीयत से टकराता ना हो, हम उसकी बात करने के लिए बैठे हैं। जब मैंने आपको पूछा था, आप ऐसा कोई लेकर आइए कि जिसमें आप मसरूफ भी रहें और गुनाहगार भी ना हो। नहीं पहले आप बताएं आप क्या क्या, मतलब
कोई तो
नहीं, क्या बताऊं मैं, बताऊं आप बोलोगे कि आप तो हाथ पकड़ के मस्जिद में ले जाओगे और चलना ही पड़ेगा मस्जिद में, जा रहे हैं
और अल्लाह करे कि मैं ऐसा हूँ, तो आप बताइए कि आप ऐसा क्या करना चाहते हैं?
अब रिलीजियन किताबें पढ़ेंगे, इस्लामिक किताब वगैरह बुक्स वगैरह पढ़े तो वो भी ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते,
नींद आने लगती है उसको पढ़ो,
वो दिल नहीं लगता जो
ये, इसको खराबी कहेंगे अच्छा ही कहेंगे?
हमारे दिल में जंग लगा हुआ है,
वो हमारी अपनी
कोई खराबी कहेंगे तो इस खराबी को दूर करने के लिए तो मजीद तशवीश बढ़ेगी, नेक लोगों की सोहबत में, मौत की याद में, इस तरह की जगह पर जंग दूर होगा ना।
लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है तो अगर घर से रोक टोक के लिए, अगर हम रोक टोक ना हो, अगर हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये को एजुकेशन वगैरह का सिस्टम आ जाता है कि को एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज में अगर बंदा अगर ना भी पढ़े तो कोई इतनी रोक टोक नहीं है, तो वही सोशल मीडिया वगैरह सब यूनिवर्सिटीज आजकल पॉलिटिक्स वगैरह भी सब है।
आपको सब पता है बेटा कि इस वक्त कितनी गंदगी है, आप मतलब मेरे लिए ना, आपके लिए शायद मैं कोई इतनी नई बात कर रहा हूँ ना, मेरे लिए कोई ज्यादा नई बात करेगी, आपको सब पता है बेटा कितनी गंदगी है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं, फितनों के दौर है कि नजात है ना बेटा, नजात नजात चंद चंद चीजों में, ये जो बाहर निकलने कहते हैं ना हदीस में मौजूद है कि तेरा घर तुझे किफायत करे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, तेरा घर तुझे किफायत करे। अच्छा आप बोलो कि घर में रहूंगा तो भी मैं गुनाह करता हूँ, मैं भी बुराइयों में या फजूलियात में मुब्तला हो जाता हूँ, खाली एक जुज नहीं हदीस का, अपने गुनाहों को याद करके रो, तेरा घर तुझे किफायत करे, और जबान को काबू में रखो। अब ये तीन चीजें क्या हम कर पा रहे हैं, ना हमारी जबान काबू में, ना हमारा घर हमें किफायत कर रहा है कि हम घर में रहें, बल्कि एक किताब में लिखा है यहाँ तक है कि घर के टाट बन जाओ, यानी बिल्कुल पैबंद कहता दीवार में लगा होता है ऐसे बन जाओ, यानी जरूरियात के अलावा घर से ना निकलो, क्योंकि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। आप जो कुछ कह रहे हैं मेरे भाई, आप मुझे बताए, आप सब इस बात को एडमिट करेंगे कि हमें हमारा जो अंदाज है, हमारा जो कल्चर, हमारी जो सोचें चेंज हुई हैं, इसका ताल्लुक हमारे घर से नहीं, अगर घर से भी है तो स्क्रीन से है, कोई ना कोई स्क्रीन है जो आपको वे दिखा रही है, बाहर का कोई माहौल है जो आपको नेगेटिव रास्ता दिखा रहा है, तो और इसको कबूल करने के बावजूद भी तफरी के नाम पर, आसाइश के नाम पर कुछ करें नहीं, बोर हो जाएंगे के नाम पर हम उसी तरह की चीजें लेकर बैठेंगे तो फिर बनेगा क्या हमारा? तो ये गुनाहों के रास्ते सब पता होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ जाओ तो गलत है, तो बेटा कीचड़ में चलोगे तो छींटे तोड़ेंगे ना।
असल में फिर नौजवान की तारीफ फिर क्या आएगी?
अब अगर इस्लाम की इस्लामिक थोड़ा टाइप होने जाए कि नमाज वगैरह पढ़े तो भी वो बोलते हैं मौलाना बन जाएगा, थोड़े बयान वगैरह।
ये माँ बाप की नेगेटिविटी है, ये तो वालिदैन की है, कोई भी अगर ऐसा करता है तो वो उसकी नेगेटिविटी है ना, उसका मनफी सोच है उसकी, तो हम कोई भी इसको, हम जैसे लोग तो अप्रिशिएट, कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, इसकी मजहबी सोच होगी। लेकिन अब नौजवान बोलेगा यार हम करें क्या, तो ऐसा तो नहीं ना कि करें क्या से ये मुराद है कि कुछ भी नहीं, अब पूरा दिन पे इतना टाइम है क्या कि आप कुछ करने के लिए इतना मतलब निकालना चाहते हैं? गुनाह से बचकर तालीम हासिल करें, गुनाह है क्या, जब इसी का पता नहीं है तो फिर बचेंगे कैसे? तो इस वक्त आप यहाँ आए तो आपको रास्ता पता था तो आए ना, और रास्ता पता नहीं हो तो आएंगे कैसे, भटक जाएंगे। गुनाह है क्या, इसको पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, इसको पढ़ें, इसके बचने का तरीका क्या, इसको पढ़ें। यानी आप जो नौजवान है, आप तो स्टूडेंट है, आपका तो काम ही पढ़ते रहना है, तो आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, वो किताबें भरी हुई हैं, आपको टीवी देखना है भाई, घंटा दो घंटा ही आपको निकालना है ना, मदनी चैनल देख लीजिए, अब मदनी चैनल देखकर आप फ्रेश हो रहे हैं या इसके आगे पीछे जाकर आप फ्रेश हो रहे हैं, ये तो आपने फैसला करना है। आप किसी दावत इस्लामी में या किसी आशिकाने रसूल के साथ आधा घंटा, पौना घंटा, डेढ़ दो घंटा बैठकर फ्रेश हो रहे हैं, या ऐसे दोस्तों के साथ फ्रेश हो रहे हैं ये जो गालम गुलौज भी दे रहे हैं, उल्टी सीधी मजाक मस्करी भी कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, उनके साथ आप फ्रेश हो रहे हैं, तो ये फैसला तो आपको करना है ना कि आप कौन सी मक्खी हो, वो जो फूल पर बैठती है और रस चूस के शहद बनाती है, या वो जो जख्म पर बैठती है और पीप चूस के बीमारियां पैदा करती है, आपको कहाँ बैठना पसंद है? फैसला तो आपको लोगों ने करना है।
इसमें टेम्पररी तो मजा आ रहा होता है,
किसमें?
गुनाह वगैरह के कामों में टेम्पररी तो मजा आ रहा होता है, इसके बाद जो पता चल जाए कि ये काम गलत है तो फिर जाके
अफसोस होता है ना, तो उस काम से बचो जो आप बाद में जाकर अफसोस का सबब बने। बहुत पूछते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये हम पूछते हैं, अब जो कुछ करने जा रहा हूं ये जायज है कि ना जायज है ये भी पूछ लें, वो आपसे चार सवाल करेंगे मुफ्ती साहब, बड़े आप इतने बच्चे भी नहीं है, चार सवाल करेंगे, अगर लगता है कि वो नाजायज है तो छोड़ देंगे।
मम्मी बोलेगी अपना पर तू क्यों दूसरी दिन चाहते गए।
अम्मी बोलेगी ना बेटा, अम्मी तो जायज नाजायज का फैसला नहीं करेगी ना, या तो गुनाह ने सबब का फैसला करना मुफ्ती साहब करेंगे ना, अम्मी तो नहीं करेगी। अम्मी तो ये फैसला करेगी कि आज बेटा खाएगा कि ना रात को खाएगा क्या, जिसका जो फैसला है बेटा उसको करने दो ना।
घर वाले भी इसलिए बोलते ना कि वहाँ से फ्यूचर बिल्ट होगा, अब जामियातुल मदीना में आ जाएंगे तो फ्यूचर आखिरत तो अच्छी हो जाएगी।
हम मिलकर जामियातुल मदीना में आए और एक अच्छे बेदार और अच्छे खानदान के, खानदान तो खैर जो आते हैं उनके अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक जिसको पढ़े लिखे और तालीमी याफ्ता कह जाए उन्हें लोगों के बच्चे, जिस दिन जामियातुल मदीना में आ गए ना आलिम बनने के लिए और ये आलिम बने, तो ये जो कमजोरी नजर आती है ना जामियात और उलमा की फील्ड में, ये कमजोरी दूर होगी। आपको आपके माँ बाप बेटे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आप डॉक्टर बन जाओगे तो इनको खुशी बहुत होगी, इज्जत अपनी जगह पर है, डॉक्टर से इज्जत तालीम की आज भी है, लेकिन माँ बाप का मकसद क्या है, पैसे कहाँ से अच्छा कमाएगा, यही है।
तो इसीलिए वो ऐसी यूनिवर्सिटीज में जानते हैं जिनकी वैल्यू
है। हम उलमा की सैलरीज, उलमा की सहूलतें, उलमा की फैसिलिटीज को इतना अपग्रेड कर दें कि कल का हम जामियातुल मदीना में या आलिम बनने के लिए जाते तो हमारे माँ बाप को टेंशन ही ना हो। हम बोले हम मस्जिद का इमाम बने जाएंगे तो माँ बाप को पता है मस्जिद का इमाम बनेगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, इसकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी।
ज्यादा क्वांटिटी लगाई जाए तो गांव देहात के जो यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आते हैं उनको ही देखा है कि वो आलिम है, फाजिल है या कोई सब बनते हैं, ज्यादातर जो इनका बैकग्राउंड ज्यादा ब्राइट है तो वो ज्यादा यूनिवर्सिटीज वगैरह में अप्लाई करेंगे, या कोई फादर चाहेगा ही नहीं कि मतलब कि वो मेरे पास पैसा है तो मैं उसे आलिम बनाऊं, मुफ्ती बनाऊं, वो कभी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरा बिजनेस संभाले।
हमें दीन से दूर किया गया है और चूंकि हमारे पीछे बहुत सालों पहले दीन से दूर किया गया और वो जहन ऐसा बन चुका है घर वालों का कि वो अपने आने वाली नस्लों को भी दीन से दूर कर रहे हैं, ये एक वजह होती है कि हम ये सिलसिला लेकर आए नौजवानों के मसाइल, ताकि हम ये बात बताएं कि नौजवान इतनी समझ को पैदा करे कि मैं अपने इस्लाम और अपने दीन के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, क्या मेरा काम सिर्फ खेल कूद में तमाशा करके टाइम पास करना है, क्या मेरा काम सिर्फ ये अंग्रेजी तालीम हासिल करके अच्छे पैसे कमाने वाला बनना है, क्या मेरा काम सिर्फ आसाइशें पैदा करके ये करना है। तो सहाबाए कराम ने क्या जिंदगी गुजारी और बुजुर्गों ने क्या जिंदगी गुजारी, इन्होंने दीन के लिए इस्लाम के लिए जो काम किया वो क्या था। तो जब आपकी सोच सबसे पहले बेटा ये बननी चाहिए कि मैं अपने दीन को, अपने इस्लाम को, अपने मजहब के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा नौजवान ये सोच बना ले। अब जिस फील्ड में भी जाएगा ना, मैं फील्ड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जिस फील्ड में भी जाएगा उस फील्ड में पहले सोचेगा कि इस फील्ड से मैं अपने दीन को, इस्लाम को क्या फायदा पहुंचाऊंगा, मैं अल्लाह को राजी करने वाला कौन सा काम करूंगा। डॉक्टर बनना चाहता है और प्रोफेशन इख्तियार करना चाहता है, अब इसके लिए सोचेगा इसके जरिए मैं अपने दीन को, अपने इस्लाम को और सरकार की उम्मत को क्या फायदा पहुंचाऊंगा। इसमें हमारा अपना फायदा तो है, लेकिन हमारी अपनी डायरेक्शन बेहतर हो जाती है।
बाप जो है वो पॉइंट बनाते हैं फिरका बंदी को, तो इस चीज को पॉइंट बनाते हैं कि इस चीज में आजकल काफी,
अगर वालिदैन को ऐसे फिरके वाली या तफरीक वाली बात करते हैं ना, तो सिंपल सी बात ये है कि ऐसी बातें करने वाले कितने हैं। यहाँ तो माँ बाप मजहब की तरफ बेटा आने नहीं दे रहे ना, यहाँ बात मजहब की तरफ ही ना आने देनी है, और मजहब की तरफ आने ना देने की वजह क्या है कि ये मौलाना हो जाएगा, इसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा।
सब यही माँ बाप तो यही बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह कर, वो पांच नमाजें पढ़ बस खत्म है, क्यों बयान में गया, हमें बैठना, वो अपनी तरफ खींच लेंगे, अपने जैसा बना लेंगे, ये वो।
ये माँ बाप के बेटा मनफी सोच है ना, माँ बाप ने अपने बच्चों को उस तरफ जाने से रोका, माँ बाप को कितने मिल गई इनकी औलाद। वो किसी ने बड़ी प्यारी मुझे पोस्ट भेजी थी कि जब डॉक्टर, पायलट और इस तरह का बेटा बन जाता है तो माँ बाप उसे बात करने में एहतियात करते हैं, और जब बेटा हाफिज और आलिम और मुफ्ती बन जाता है तो वो अपने माँ बाप से बात करने में एहतियात करते हैं। कितना फर्क है। तो इस वक्त जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि हमारे नौजवानों को घर घर समेत, घर में जाएं, इदारों में जाएं, महलों में जाएं, जिसको देखो नौजवानों को दीन से दूर करने में लगा हुआ है, मस्जिद के में मत बैठ, मजहबी लोगों में मत जा, मौलाना हो जाएगा, मौलाना हो जाएगा। अब मौलाना होगा तो इंशाल्लाह ताला ये दुनिया भी संवारेगा, अपनी आखिरत भी संवारेगा, माँ बाप को भी संभालेगा, लेकिन بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا, اور شاید اس کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, اور ماں باپ کی انہی غفلتوں نے آج ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کا منہ دیکھنے جیسا بنا دیا نا. یہی اولاد اٹھا کر ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتی ہے. کوئی عالم اور نیک آدمی تو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں نہ ڈالے گا.
نہیں نہیں, بی کام لیول کروں نا, فائنل ایئر چل رہا ہے, تو اس کے لیے میں کیا آگے کیا سوچ کے رکھوں کہ میں اس سے کیا دین کا کام کر سکتا ہوں اکاؤنٹنٹ بن کے؟
سب سے پہلے تو یہ سوچیں گے آپ کہ اگر میں جو کر رہا ہوں پہلے تو میرا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے جو میں کر رہا ہوں, جیسے سی اے وغیرہ کرتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت کرنی پڑتی ہے. اوکے, اب اگر یہ انٹرسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں گیا تو ابھی دیکھیں کتنے حرام کاموں میں پڑے گا. پیسہ تو مل جائے گا لیکن حرام کام سے کیسے بچے گا؟ بہت ساری ایسی ناجائز ڈیلنگس ہوتی ہیں جن کو یہ اکاؤنٹیبلٹی میں لے گا, پھر اس کے اندر اس کے لیے اور آزمائش ہے. تو سب سے پہلے تو یہ نیت کرے گا کہ میں اپنے اس پروفیشن میں رہ کر کسی بھی حرام کام کو نہیں کروں گا. اب یہ حرام کام کو نہ کرنے کے لیے میدان میں آ تو جائے گا, پھر بعد میں نتیجہ نکلے گا کہ اس کو کوئی اپنے پاس آفس پہ ہی نہیں رکھے گا کہ بھائی جب تم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا کر رہے ہو. اب یہ سوچے گا کہ میں نے پڑھا کیوں, تو میں کہوں گا کہ بیٹا پڑھنے سے پہلے سوچا کیوں نہیں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اگر اس میں مجھے ورس کم ٹو ورس آفٹر آل آ کر حرام میں ہی پڑھنا ہے, ناجائز کاموں میں پڑھنا ہے, تو یہ تو مجھے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں جا کا رہا ہوں. لیکن یہ تو عقل مند لوگوں کا کام ہے نا کہ وہ جہاں سے چلے اور جہاں جانے اس کا روڈ میپ تو بنائیں گے نا, روٹ تو بنائیں گے. وہ روٹ ہی اگر آپ کا صحیح نہیں بنا تو پھر بیٹا آپ کہاں جاؤ گے؟
یہی چیز تو آج کل دیکھی ہی جاتی نا کہ اب وہ مذہبی اس میں ہوگا, اس کو مسئلے مسائل پتہ ہوں گے تو وہ اپنے مسئلے مسائل حل کر سکے گا. جب وہ سیکھے گا ہی نہیں اس چیز کو, جب اسے یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوگی تو پھر وہی ہوگا کہ عالم کے پاس جاؤ, پوچھ کے آ جاؤ, مفتی سے پوچھ لو, اسی سے مطلب کہ بس وہ.
ابھی آپ ہمارے نوجوانوں کی باتیں غور سے سن رہے ہوگے, ممکن ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں ان کو کیا جواب دوں. یہ شاید وہ نوجوان اس وقت جمع ہوئے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ مذہبی ذہن ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. اب یہ اس معاملے میں غور کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, کیا میں ان کے سامنے قبول کر لوں کہ والدین کی غلطی ہے, والدین کو پہلے سوچنا چاہیے تھا, یا والدین اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بچوں کو اس میدان میں لاتے ہیں سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارا بچہ حرام کی طرف جائے گا کہ حلال کی طرف جائے گا, جائز کی طرف جائے گا کہ ناجائز کی طرف جائے گا, نیکی کی طرف جائے گا کہ بدی کی طرف جائے گا, یہ ہم نے سوچا نہیں ہے. آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کی محبت میں اور دنیا کی فیشن کے لباسوں میں ہی ڈبو کر رکھ دیا, اب کر کیا رہے ہیں؟ میں تو والدین سے بات کر رہا ہوں, اب کر کیا رہے ہیں؟ میں بھی پچھلے دنوں میں ادھر ادھر کچھ ملنے جلنے کا موقع ہوا, میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کا جو لباس ہے نا, چھوٹے سے بچے کا لباس, یہی گویا کہ اس کی گائیڈ لائن ہے کہ ہماری لائن کون سی ہے. چھوٹے سے بچوں کا لباس بھی ہم مذہبی نہیں پہنا پا رہے, تو ان کی سوچ مذہبی کیسے بنائیں گے؟ یہ مذہبی لوگوں کے قریب جاتے ہیں, نیک لوگوں کے قریب جاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے کا فیچر کیا ہوگا. آپ کے بچے کا فیچر صرف اتنا چینج ہو جائے گا کہ جب آپ کا بچہ مذہبی ہو جائے گا, جس کو آپ مولانا کہتے ہیں وہ ہو جائے گا, صرف اس کا فیچر اتنا تبدیل ہو جائے گا کہ وہ ہر اس کام سے بچے گا جو حرام و ناجائز ہے. اگر اس میں بھی آپ کو تکلیف ہے کہ میرا بیٹا حرام و ناجائز کام سے بچنے کی وجہ سے اس کا فیچر خراب ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دینی تربیت کی ضرورت ہے. یعنی آپ کیسے مسلمان ماں باپ ہیں کہ آپ کا بچہ حرام و ناجائز کام سے بچنے کی سوچ پیدا کرے اور آپ کو لگے گا کہ اس کا فیوچر بلاسٹ ہو جائے گا؟ ہاؤ کین از اٹ پاسبل کہ ماں باپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ انگلش لینگویج سیکھ رہا ہے یا کوئی بھی ایسی مطلب کہ تعلیم کی طرف ہے, اب دیکھے تو صحیح کہ وہ کر کیا رہا ہے. اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا جب ماں باپ کو علم نہیں ہے تو کیسے کام چلے گا؟ یہ تو کچھ بننا چاہتے ہیں جو ان کی گفتگو سامنے آ رہی ہے, لیکن ان کو اگر میں لے کر چلوں گا تو آج آپ میرا سلسلہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ عمران بیٹھ کر ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے, ہماری زندگی بھر کی محنت تو پانی پھیر رہا ہے. اب میں آپ کی زندگی بھر کی محنت تو میں پانی پھیر رہا ہوں یا جو یہ بےچارے کس سمت جانا چاہ رہے لیکن نہیں جا پا رہے, اب یہ کہہ رہے کہ میرا تو فیوچر ختم ہو جائے گا اگر میں انٹرسٹ اور سود اور ان تمام چیزوں سے اگر میں کنارہ کروں گا, میں ڈیفینیٹلی نہیں جاؤں گا اس طرف, مجھے کون جاب دے گا؟ جب مجھے کوئی جاب نہیں دے گا تو میں پرائیویٹ کمپنی کھولوں گا, جب پرائیویٹ کمپنی کھولوں گا तभी मुझे कंपनीज आकर तो बोलेंगे ना कि हमारी अकाउंटेबिलिटी करके दो। मेरे सामने जब इनका लेजर आएगा, जब इनके सामने इनके बैलेंस शीट आएगी, इनका ट्रायल बैलेंस आएगा, इनके डे टू डे की ट्रांजेक्शन आएगी, इनके बैंक की ट्रांजेक्शन आएगी, और मैं इनके सामने ये हराम और नाजायज काम खोल कर रखूंगा कि मैं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इसकी आपको फ्यूचर प्लानिंग बनाकर नहीं दे सकता हूँ, इनको कौन काम देगा बेचारे को, बैठे हुए होंगे। फिर आप इनको बोलोगे कुछ कर, तो बोलेगा मैं हराम के अलावा सब कुछ कर सकता हूँ, हराम नहीं करूंगा, नाजायज नहीं करूंगा। तो आप बोलोगे कि फिर भूखा मरेगा। तो आप बताएंगे ये बच्चों को आप किस तरफ एजुकेट कर रहे हैं, इनको किस समत ला रहे हैं? क्या माँ बाप का काम नहीं था बच्चों को गुनाहों से और हराम से बचाना? आप कह रहे खाली नमाज पढ़ वापस आ जाए, इसको नमाज पढ़नी कैसे, ये कौन सिखाएगा? माँ बाप सिखाएंगे? माँ बाप को तो खुद नमाज पढ़ने नहीं आ रही। अब ये नमाज सीखने के लिए भी किसी मजहबी शख्स के पास बैठेगा तब भी तकलीफ है। अच्छा कुरान पढ़ने, आप बोल रहे नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के लिए कुरान सही पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? अब कुरान पढ़ने के लिए भी आप बोलोगे कि नहीं किसी और से ये, अब तो आप कुरान पढ़ना सिखा दे। हम क्या कह रहे हैं कि इसको मौलाना के पास भेजो। जो शरीयत सीखना इस पर फर्ज है, माँ बाप सिखा दे, ये जिम्मेदारी तो वैसे ही माँ बाप की है, आप सिखा दे, खत्म हो गई बात। ये सिखाने के लिए आपको जो बनना पड़ेगा, तो लोग आपको देखकर ये बोलेंगे कि इसका बाप मौलाना है, और क्या नतीजा निकलेगा? अब इनकी कंफ्यूजन देख रहे हैं, और ये तो अपनी तफरी वफरी से और क्या करना है क्या नहीं करना तो बाहर आ गए। अब तो ये तो चले गए यार, हम लोग बच्चे कैसे? हम एक घंटा हुआ है शायद कमोबेश बैठे हुए, एक घंटे से कम हुआ है, एक घंटे से कम इनकी ये पोजीशन है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये एक साल तक अगर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रच बस जाए ना, फिर देखिए कि ये कैसे होते हैं, ये हीरे हैं। आप इनकी बातें सुने, इनके अंदर क्रिएटिविटी है, इनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, ये कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हमने इनकी तमाम सोचों को एक तरफ महदूद करके एक सम डाल दिया। अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जायज है कि नाजायज है तुम पढ़ो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। ये फ्यूचर नहीं बन रहा, इनका फ्यूचर आप ब्लास्ट कर रहे हैं, इनका फ्यूचर जाया कर रहे हैं। इनको दीन की तरफ, मजहब की तरफ आने दें। दीन और मजहब ये बेरोजगार नहीं छोड़ता। हमारे कौन से साहबा बेरोजगार थे? हमारे कौन से औलिया कराम बेरोजगार थे? बेरोजगार तो आज का नौजवान है जो फाइलें हाथ में लेकर घूम रहा है, इसको जॉब नहीं मिल रही होती। आपको मजहबी लोग तो तकरीबन रोजगार भर ही मिलेंगे। सोचिए, मैं वालिदैन के लिए एक कह दिया है, सोचिए करेंगे तो करूंगा ना। आप इस तरफ जाएं और अपने बच्चों को मजहबी माहौल की तरफ लाने वाले बने।
एक सवाल है कि अगर चलो अगर माँ बाप भी अगर सही है, तो एक जवाब इसका भी अर्ज कर दें कि नौजवान के लिए क्या तलकीन है कि उसे उसका क्या अहम किरदार है?
वो अपनी नमाज की हिफाजत करे, अपने दीन की हिफाजत करे, सच बोले, वादा खिलाफी ना करे, और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखे, समझे और उस पर अमल करे।
आप क्या रिकमेंड करते हैं कि या तो पूरे दीन में आ जाए या पूरी दुनिया में चले या दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चले?
मैं वो रिकमेंड करूंगा जो कुरान ने हुक्म फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलु फिस्सिल्मि काफ्फा, ए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे इस्लाम में ही आएंगे, आधा तितर आधा बटर थोड़ी रहना है। ईमान लाए तो ये हमारे लिए हुक्म है। ईमान ले आए ना तो फरमाए ना कि ईमान वालों, ईमान ही नहीं लाए तो फिर हुक्म किससे?
मुकम्मल से क्या मुराद?
मुकम्मल से मुराद ये होता है कि फराइज और वाजिबात का आमिल हो, अपने आप को हराम और नाजायज कामों से बचाने वाला हो। जो काम करना इस पर फर्ज है वाजिब है वो करे, जिस काम को छोड़ना इस पर फर्ज और वाजिब उसको छोड़े, हराम और नाजायज कामों को तर्क करे और अल्लाह की इबादत वाली जिंदगी गुजारे। और इसमें हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि अल्लाह की इबादत करने का मतलब कि बंदा बेरोजगार रह जाता है और लोगों से भीख मांगता है और खैरात खाकर जीता है, ऐसा नहीं होता।
तिजारत को भी मतलब के
तिजारत दीन का हिस्सा है
तो वो भी कर सकते हैं। अपना दुनिया भी तालीम भी इससे अगर हासिल हो तो आप
गुनाह से बच करो। और मुसीबत ये है कि इस वक्त जो निजाम तालीम जो चल रहा है ना, उससे मुसलमानों की अपनी को कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है। ये सारा जो बना हुआ निसाब या बना हुआ सिलेबस है या बनाया निजाम है, इसमें चूंकि मुसलमानों की कोई ऐसी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ऑन किया गया है गैर मुस्लिमों का, तो वो किस तरह आपको दीन के रास्ते पर लेकर चल सकता है ये निजाम तालीम?
इस्लाम में मुकम्मल आ जाओ,
अप्रैल फुल छोड़ दो।
तो अप्रैल
दीन में मुकम्मल आ जाओ, अप्रैल फुल छोड़ दो।
क्या इसमें सिर्फ अप्रैल फुल या अप्रैल का ही होगा या फिर इसके अलावा कोई मजाक?
अप्रैल फुल क्यों है? मैंने अप्रैल फुल मनाने वाले के बारे में यही कहा जाएगा कि ये गुनाह कर रहा है। क्यों? मोस्टली कि अप्रैल फुल मनाएगा तो इसमें झूठ बोलेगा। अप्रैल फुल मनाएगा इसमें दिल आजारिया करेगा, अप्रैल फुल मनाएगा तो इसमें धोखा देगा। अब इन चीजों को क्या हमारा दीन, हमारा इस्लाम इन कामों की इजाजत देगा?
वो तो मजाक में झूठ बोल रहा है,
मजाक में भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं, हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। यही इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना है। यही नहीं पता होगा हमें कि मजाक में भी झूठ बोलना नाजायज है, तो इसका मतलब हम दीन में मुकम्मल दाखिल हुए ही नहीं, हमें पता है कुछ नहीं।
अगर हमारे साथ कोई अप्रैल फुल बने तो हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए?
उसको उसके लिए दुआए मगफरत करे और क्या करे,
की दावत दे, किस तरह
की दावत देगा? तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है या नहीं है, ये धोखा है या नहीं है? झूठ बोलने वाले के लिए अजाब की हदीसें मौजूद हैं, धोखा देने वालों के लिए अजाबात बयान किए गए हैं। इसी तरह हम मुसलमानों की बिला इजाजत से दिल आजारियां करते हैं, चीजें छुपा लेते हैं, कितनी तकलीफें दे रहे होते हैं ना आपके सामने। तभी अप्रैल फूल, फूल का मतलब क्या है? बेवकूफ। तो जो जो फूल होगा वो अप्रैल फूल मनाएगा, मुसलमान तो फूल नहीं होता।
तो दोस्तों से मनाने में क्या है, तब उसको पता है, वो थोड़ी देर उसको बुरा भी नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर मैंने उसकी चप्पल छुपा ली और थोड़ी देर बाद मैंने बोल दी भाई तेरी चप्पल ये, वो सब परेशान हुआ लेकिन उसके बाद भी उसके दिल में कोई रंजिश नहीं थी। बोला मेरा दोस्त,
अच्छा आपके कोई चप्पल छुपाएगा तो पूछो,
नहीं होगा।
दोस्त का भी पता होता है कि कौन सा दोस्त बुरा मानेगा, कौन सा दोस्त बुरा नहीं मानेगा।
ये तो एक दो की मिसाल आप दे देंगे, हर कोई तो ये इसको अफोर्ड नहीं करेगा।
एक दो से करेंगे वो ठीक है,
एक दो से भी नहीं करेगा ना। मतलब इस्लाम इन चीजों को मना कर देगा ना कि जिससे खराबियां पैदा होती हो। यानी आपने मतलब आपने चप्पल छुपाए, मुझे उसी वक्त फोन आया था और मेरी माँ इमरजेंसी में थी,
तो दे दूंगा मैं।
नहीं तो आप, मैं नहीं बोलना चाहता कि मेरी माँ इमरजेंसी में, मुझे जल्दी है जाना है। अब आपको तो और मुझे जाना है तो आपको और तफरी सूझेगी, दे नहीं देंगे आप। आप और दफरी सूझेगी कि यार
तो जाना जा रहा है। इस तरीके से जाना है तो
नहीं, तो आपने वो काम ही गलत किया ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मतलब एक हदीस है पूरी, इसका खुलासा ये कि किसी ने किसी के चप्पल छुपा लिए, यहाँ चुराना भी नहीं बोलेंगे, छुपाना बोलेंगे ना, किसी चप्पल छुपा लिए और वो चप्पल ढूंढने लगे, थोड़ी देर के बाद चप्पल दे दिए गए। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया कि मुसलमान को तकलीफ देना या मुसलमान को तशवीश में डालना कैसा? तो उन्होंने यही अर्ज की कि आका मैंने तो अज़राए मजाक किया था, मजाक के तौर पर किया था। तब भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं किया, फरमाया कि मुसलमान को तकलीफ देना कैसा? असल में मुसलमान को तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। अच्छा, वो काम जिसमें नजाक की कैफियत पैदा हो, लड़ाई की कैफियत पैदा हो, नाराजगी की कैफियत पैदा हो, इन इन चीजों को इस्लाम पहले से रोक देता है कि ये नहीं होना चाहिए। आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा। अब इससे के साथ कह रहे हो तो वो उसको पता चलेगा, वो उसके साथ करेगा, वो उसके साथ करेगा, तो ये एक खराबी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होगी ना। आदमी पहली बार खाता है तो बीमार थोड़ी हो जाता है, लेकिन उसी को रूटीन बनाएगा तो फिर बीमार हो जाता है। तो वो चीज खाने की आदत ही ना डालो जो तुम्हें रूटीन में लाएगी और फिर बाद में तुम्हें बीमार कर देगी। इस तरह अगर ये अप्रैल फूल मनाने वाले जो बिल्कुल फूलम फूलें, हजार दफा सोचना चाहिए और हमारे मुसलमानों को कितनी दफा सोचना चाहिए कि ये अव्वल तो ये कि मुसलमान ऐसा कोई अंदाज लाता ही नहीं है मोस्टली।
ये अप्रैल फूल इजाद किसने किया?
फूल ने तो वो अंडेड बिल्कुल फूल बटा फूल है। मुझे ये बता दे,
लेकिन इसमें कुछ चीजें मतलब क्या जायज है क्या नाजायज है।
आप किसी के अप्रैल फूल मनाना चाह रहे हैं जो आजकल मनाते हैं, आप कैसे मनाएंगे?
चलो झूठ तो नाजायज हो गया।
नहीं, आप किसी का प्रेयरफुल मनाने का कोई ऐसा ना, आप मुझे फार्मूला दो। चलो मैं इस तरह प्रेयरफुल मनाना चाहता हूँ, और वो अप्रैल फूल जिस तरह जिसको बोलते हैं अप्रैल फूल मनाया वो हो जाए कैसे?
लास्ट टाइम आटे का टुकड़ा था जिसको बर्फी बना के खिलाया था ना कि बाबा बर्फी है, मेरा रिजल्ट आ गया अच्छा है, तो उस वक्त तो खा ली थी, लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्त ने खिलाया, मेरा यार ये तो आटा है, सब थू थू करके फेंक दिया। अब मैं थोड़ी नाराज हुआ, मेरा दोस्त है वो,
आटा जाया हुआ नहीं, आटे को बर्फी बोल के खिलाया, आटे को बर्फी बोला गलत बयाने की, उसको धोखा दिया ये गलत हुआ, और इतना आटा जाया हुआ ये गलत हुआ।
वे नहीं है, आप नहीं मना सकते
सही तरीके से। नहीं तो ये अप्रैल फूल जो भी ये इतने सारे नौजवान बैठे एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना बेटा, आप अप्रैल फूल मनाना चाहते हैं, इसका जायज तरीका आप मुझे बताएं, जिसमें झूठ भी ना हो, धोखा भी ना हो, मुसलमान की दिल आजारी भी ना हो, इसको तकलीफ पहुंचाना भी ना हो।
एक तो फुल कामयाब तब होगा जब सामने वाला बंदा परेशान होगा,
ज्यादा झटका लगेगा। तो चले बताएं
परेशानी,
चले बैठे हुए हैं बात करते।
कैसा मजाक जायज है कि उसको अब्दुल फुल का नाम ना दिया जाए, अगर सिर्फ मजाक की हद तक किया जाए?
पर मिजाज तो एक नॉर्मल सा खुश तबई होती है, एक मुस्कुराने वाला माहौल बन जाता है, एक हशाश बशाश माहौल बन जाता है, यही होता है। यानी कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मिजाज मैं भी करता हूँ लेकिन मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत कम मिजाज फरमाया, कसरत से रोना साबित है। हमने एक ही मिजाज को ले लिया ना, अब जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात बयान करके मिजाज कर लेते हैं तो उनको वो रही तुमने हंसी मजाक तो चलो कर ली मिजाज शरीफ को बुनियाद बनाकर, अब ये जो रोने का जो वाकया है कसरत के साथ रोना साबित है तो थोड़ा रोने का मामला भी करके दिखाओ यार, इस तरह खौफ खुदा में, गम आखरत वगैरह, अल्लाह की मोहब्बत में रोना भी बता दो। चलो अप्रैल फुल बताओ ना कैसे मनाए।
शरण तौर पर हुक्म क्या है अप्रैल फुल बताने?
इसमें ये चीजें गलत है ना, मैं ये कह रहा हूँ
चीजें गलत तो मतलब हराम नाजायज, इस तरह
मतलब झूठ हराम धोखा देना मुसलमान को नाजायज, झूठ नाजायज हराम नाजायज इन्हीं का मलगूबा है आपका ये। फिर किसी की माँ को फोन करके बोल दिया कि आपका बेटा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब माँ को सदमा, झूठ अलग, तकलीफ देना अलग, तो कोई तरीका तो बताओ ना। चलो मदनी चैनल पर इतने लोग देख सुन रहे होंगे कि अप्रैल फुल मनाने का कोई, आप बताओ कैसे अप्रैल फुल मनाना चाहिए?
लिंक तो होगा झूठ का
जी,
कहीं भी जाए लिंक तो धोखा तो आ ही रहा है
जी,
लिंक तो होगा झूठ का धोखे का,
इसके बगैर नहीं हो सकता अप्रैल फुल।
तो
आपको तो इतना मतलब तजर्बा होगा, लोग तो तरीका बताओ तो अप्रैल फुल भी हो जाए, झूठ भी ना हो, धोखा भी ना हो, वादा खिलाफी भी ना हो, मतलब दिल आजार भी ना हो, सदमा भी ना हो, मुसलमान को तकलीफ देना भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस एक जस्ट एक मिजाज जिसको कहते हैं ना वो हो कि अगला खुश हो। देखो मिजाज से आदमी खुश होगा, मिजाज से तकलीफ नहीं होगी। मैं अगर आपके साथ भी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मिजाज करूँ तो शायद आपको फर्क होगी, अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाएंगे आप।
अगर हम दुनियावी तौर पर ये मनाते हैं तो झूठ और धोखे के बगैर तो ये नहीं हो सकता। अब आप ही कोई ऐसी चीज बताएं जो मतलब इस्लाम के दायरे में रहे कि हम
इस्लाम में इन तरह की चीजों की कोई गुंजाइश है ही नहीं
दोस्त।
इस्लाम तो बहुत सादा सिंपल और बड़ा स्ट्रेट दीन है, इसमें इन तरह की फजूलियात और गुनाह भरे सिलसिलों की तो गुंजाइश इस्लाम और दीन में है ही नहीं। ये तो बाहर से आया ना, फूल लोग लाए ना, और मुसलमान में जो फुल मेंटेलिटी वाला होगा, बेवकूफ मेंटेलिटी वाला होगा, वो इसको एडॉप्ट करता चला जाएगा। चलो कुछ तो तरीका बताएं अप्रैल फुल का,
फिर मतलब मजाक ही ना करें।
चलो आप सब, मेरे लिए आपका एक सोच है कि यार एक मजहबी आदमी है इमरान ना, एक मजहबी आदमी है, एक मुबल्लिग है, इस तरह जो भी आप मुझे कह लें, आप ईमानदारी से बताएं अगर मैं किसी का अप्रैल फुल मनाऊं अच्छा लगेगा?
नहीं।
आप मेरे बारे में क्या तासुर लेंगे?
आप भी बना रहे हम लोग भी बनेंगे
गलत नेगेटिव जाएंगे
जी।
या आप नहीं मनाना है तो मुझे क्या कहेंगे यार इमरान आपको करना चाहिए यार, कि आपकी लाइन है, मेरी लाइन क्यों नहीं है भाई? जो मैं मजहबी आदमी कहलाता हूँ, मैं लोगों को दीन पर चलने की दावत देता हूँ, यही ना। तो आप ये कहेंगे आपको भी दीन पर चलना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको कबूल कर लेंगे कि यार ये लाइन ऐसी है नहीं जिस पर चला जा सके। आप किसी मजहबी आदमी को इस लाइन पर चलता हुआ देखेंगे तो आपको शौक लगेगा, है या नहीं है? इसका मतलब ये लाइन सही नहीं है, हमने क्यों ली हुई है? या तो हमें झूठ बोलने से नफरत नहीं है, धोखा देने से नफरत नहीं है, हमें मुसलमानों को तकलीफ देने से नफरत नहीं है, गुनाह से तो नफरत होनी चाहिए। फिर ये देखिए कि आपका कोई अमल ऐसा ना हो कि अल्लाह को नाराज कर दे, खुदा ना खासा किसी को आपने अप्रैल फुल के नाम पर कोई झूठ बोला, खुदा ना खासा हार्ट फेल हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए, कोई उसकी चीज जाया हो जाए, हाथ से कोई चीज गिर जाए। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए कराम का काफिला जा रहा था तो एक सहाबी को ऊंट पर सफर चलते चलते ऊंग आ गई, साथ ही जो दूसरे सहाबी ऊंट पर थे ना, इन्होंने वो तीर होता है ना वो निकाल के इनकी तरह वैसे इशारा किया था ना, इनकी आंख खुली तो जड़ गए ना, झटका लग गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद ही नहीं किया कि भी मुसलमान को तकलीफ देना है। यानी हमारा दीन इतना प्यारा दीन है, इसको समझने की जरूरत है। आप इसको बोलोगे तफरी नहीं है, यार किसी को तकलीफ देकर तफड़ी लेना ये तो वैसे ही अक्लमंदों का काम नहीं है, सेंसलेस डिस्कशन है ना, कि मैं आपको तकलीफ देकर तफड़ी लूं। आप तकलीफ में आओ तो मुझे मजा आएगा।
तफड़ी आती है किसी की एक की फिल्म चलाना या फिर इस तरह का कुछ,
तो ये नाजायज हुआ ना बेटा, किसी को टारगेट पे लेकर फिर इसकी चलाना। यानी आप ये देखिए कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है।
आप घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि बाहर भी नहीं मिलेंगे, तो क्योंकि अब बाहर ही नहीं जाएंगे, कोई तफरी नहीं होगी, बात बात भी नहीं करेंगे।
तो मैं घूम फिर कर इस पर आऊंगा कि जरूरत के अलावा बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये हदीस मौजूद है इस पर, और मुसलमान हदीस से क्यों डिनाई करेगा। हालात ऐसे हैं कि बिला इजाजत शरई मर्द का निकलना दुरुस्त नहीं है, औरत का निकलना कितना गलत होगा, कोई बेपर्दा निकले कितना गलत होगा। तो इस वक्त तो घर में रहना चाहिए, जरूरत के तहत निकले, घर आ गए, दोस्त उसको बनाए कि जिसे देकर खुदा याद आ जाए, दोस्त उसको बनाए जो आपको आपकी कब्र आखरत की याद दिलाए, आपको गुनाह से बचने में आपकी मदद करे। वरना अल्लाह के नाफरमानों से दोस्ती करना इसकी शरीयत ने इजाजत ही नहीं दी है।
अब ऑलमोस्ट तो ऐसे ही दोस्त आ रहे हैं जो फिल्में वगैरह ये सब देखना
हमको चढ़ाते हैं ना, उल्टा हम बचने वाले होते हैं, हमको उल्टा लाइन पे ले जाते हैं अपने वाले, अभी चलना बहुत बड़ा मौलाना हो गया जो ये जुमला बोले, ऐसे से दोस्ती कैसे, वो कैसे अच्छा आदमी होगा। अब ये साहब ये सिलसिला कर रहे हैं ना, जब ये लोग चैनल पे देखने के बाद जब देखेंगे ना, उधर बैठकर तो बड़ी बातें कर रहे थे, उधर बैठकर तो ऐसा लगता था कि तुम बहुत नेक लोग हो, ऐसे से दोस्ती आपने की होगी ना, जो आपकी तकलीफ दे रहे होंगे, आपका दिल दुखा रहे होंगे,
वो भी मजाक ही कर रहे होंगे,
उस मजाक से आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा।
बाजार अच्छा लगेगा मगर दिल में
वो बाजार अच्छा नहीं लगता, उसको उर्दू मुहावरे में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
बस जो एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था ना हमारा पैगाम मदीना में, तो मेरे साथ दोस्त आया था मुजम्मिल, तो मामा पहन के रेगुलर नहीं पहनता पर कभी कभी ऐसे ओकेजन पे पहन लेता है, वो पहन के तो आ गया था मामा, बात भी डिस्कशन भी हुई आपसे, वो मोबाइल मार्केट में होता है, काम करता है वहाँ पे ना, तो वहाँ पर लोगों ने पकड़ पकड़ के कहा माशाल्लाह वहाँ पे तो मामा शरीफ पहने घूम रहे थे, सर पे टोपी भी नहीं है आपकी, अब मैं उसको बुलाता हूँ ना, अब वो नहीं आना, बोलता मैं नहीं आऊंगा, सुनना पड़ता है वो,
दोनों चीजें आ गए ना,
उसको बुरा लगा ना,
नहीं बुरा तो लगा लेकिन उनको अपने उस अमल की लाज रख लेनी चाहिए थी, नंबर वन। दूसरा एक आदमी जब मस्जिद जाता है तो टोपी पहन के जाता है, उसके बाद टोपी थोड़ी पहनता है, लेकिन इमामा शरीफ ऐसा कि इमामा शरीफ है ना, ये सुन्नत मुतवातिरा दायमा है, यानी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सरे मुबारक पर मुस्तकिल इमामे का ताज सजाए रखा, तो इमामा शरीफ तो सजा हुआ होना चाहिए। लेकिन बाद अवकात आदमी किसी मजहबी शख्स के पास जाता है या किसी माहौल में जाता है तो कुर्ता शलवार पहन लेता है, चेंजेस कर लेता है ना, कर लेता है, तो कोई बोलेगा यार ये क्या, तो उसने अगर उस जगह की ताजीम की है, देखे इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर नीयत में रियाकारी थी तो वो उसका अमल है, और अगर नीयत में किसी मजहबी हवाले से ताजीम थी तो हो सकता है उसको इस इमामा शरीफ पहनने ताजीम करने का सवाब मिले। तो ये चीजें आप देख लीजिए कि हमारा कल्चर कैसा, हमारी फ्रेंडशिप कैसी है, और इसमें फिर अप्रैल फूल मनाने का चक्कर आ जाए, तो आज ये नियत कर लीजिए कि हम अप्रैल फूल नहीं मनाएंगे, इसमें गुना ही गुना चुके हुए, धोखा ही धोखा है, और अल्लाह की सख्त नाफरमानी। अमीर अहले सुन्नत के इस मामले में क्या मदनी फूल हैं?
हर गैर मुस्लिम अहमक होता है, अक्ल होती तो ये ईमान ना लाते, जिस अक्ल में अल्लाह रसूल नहीं आते हम उस अक्ल को क्या मतलब अक्लमंदी के, तो इनका दिन आ रहा है, ये कसरत से झूठ बोलते हैं, अब इनकी देखा देखी हमारे नादान मुसलमान भी बस झूठ बोलते हैं इसमें। अप्रैल की पहली तारीख को इसका नाम इन्होंने रखा है अप्रैल फूल, यानी अप्रैल बेवकूफ, यानी ये तस्लीम भी करते हैं कि हम बेवकूफ हैं, ये उनकी तरफ से नारा मिला और हमारी कौम ने भी इसको अपनाया, तो बेवकूफों का दिन आ रहा है, मोहतात रहना, अपने को नहीं मनाना, तो ये हमारे मुसलमान मनाने में तुले हुए, और जहां जश्न विलादत मनाई तो शैतान इतने वसवसे डाल देता है कि किस साहबी ने मनाया और क्या हुआ और क्यों, और इन वैलेंटाइन डे मनाने को कोई नहीं बोलता, अप्रैल फूल मनाने वाले कोई नहीं रोकता कि भाई ये गुनाह का काम है, मैं मुबालगे से अर्ज कर रहा हूँ, शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह, तो ये शैतान डे है, अप्रैल फूल मनाना जो है शैतान डे मनाना है, वो बकसरत झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, कितने लोग इस पर हार्ट फेल हो जाते होंगे, किसी के चहीते बेटे को मार देते हैं, किसी को माँ को मार देते हैं, फिर हंसते के अप्रैल फूल था, गंदी चीजें भर के डिब्बा भेज देते हैं मिठाई का खूबसूरत सा, फिर अंदर लिखा हुआ मिलता है वो गंदगी निकलती है, अप्रैल फूल, कोई कानूनी शायद नहीं है इस पर, केस नहीं हो सकता अप्रैल फूल पर, शायद बाहर मुल्कों में ऐसा कुछ है। ये जो बेवकूफों के जहाँ तसल्लुत है, हम मुसलमानों में अप्रैल फुल का कोई तसव्वुर नहीं है, ये सब रद्द है। मुसलमानों इसको नहीं मनाओ, अब तक मनाया है तो तौबा करो। अगर किसी मुसलमान को धोखा दिया है अप्रैल फूल के नाम पर और उसका दिल दुखाया तो उससे आपको माफी भी मांगनी वाजिब है, उसको राजी करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह।
इस्लामिक इवेंट्स भी तो कम होते हैं।
कहाँ कम है, मसलन मेरा ख्याल है जितने इस्लामिक इवेंट से कोई भी नहीं होगा। 3 दिन बकराईद के ले लें, 3 दिन ईद उल फितर के ले लें, पूरे माह रमजान ले लें, पूरा इस्लामिक इवेंट है माह रमजान आता है। कोई दुनिया का ऐसा शायद मजहब नहीं होगा जिसे पूरा माह एक इवेंट चल रहा हो, ये माह रमजान है पूरा माह।
इस्लामिक इवेंट्स में भी हमने खुराफात डाल दी, ईद में रात को सिनेमा जाना,
कल्चर हमारा कल्चर ऐसा हो गया है। हम अल्लाह की नाफरमानी करने में जो ना बेबाक हो गए। अच्छा फिर आप शबे बारात है,
रमजान में रात को शॉपिंग
है ना, कितने इवेंट है, 12 रबीउल अव्वल है,
11वीं शरीफ
है,
और दावत इस्लामी में आ जाए तो फिर काफी सारे इवेंट
है। अभी 3 दिन का तरबियत इज्तिमा हमारा ये भी इवेंट था। जिंदगी बा मकसद बनाना है ना, यही हमारा काम है। हमारा काम ये गुनाह भरी और फजूलियत तफरी ढूंढना ये हमारा काम नहीं है। यही वो मैसेज है जिस पर हम नौजवानों को लाना चाह रहे हैं कि तफरी फजूल किस्म की तफरी और गुनाह भरे कामों को छोड़कर अपने आप को नेकी और परहेजगारी के रास्ते पे लाइए, इस्लाम और दीन के रास्ते पे लाइए। अपना लिबास अपना हुलिया ऐसा बनाइए जिसे देख कर लोग कहें कि यार ये एक मुसलमान जा रहा है। हमारा नाम सुनकर ही हमें लोग मुसलमान कहेंगे, हमें देख कर कहेगा यार ये मुसलमान जा रहा है, और फिर हमसे दीन और इस्लाम का फायदा हो। इसी में माँ बाप का भी फायदा है कि ये औलाद माँ बाप की भी बनेगी। ठीक है,
गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।